यह प्रवचन शास्त्र स्व प्रभु के द्वारा 27 मार्च 2012 श्री पाद रामानुजाचार्य के आविर्भाव दिवस के ऊपर।
रामानुजाचार्य की आविर्भाव दिवस हम सारे भक्त आज श्रीमद् भागवत की जगह भक्त भागवत की कथा श्रवण करेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की तो रामानुजाचार्य की जो कथा है खास करके हम लोग दो भागों में विभक्त किए, उनकी जीवनी और उनका सिद्धांत या उनकी शिक्षाएं। तो सुबह अभी हम लोग भागवत कक्षा में श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवनी के बारे में सुनेंगे, उनकी लीलाएं सब सुनेंगे, और शाम को गौर आरती के बाद कमल लोचन प्रभु जी के द्वारा श्रीपाद रामानुजाचार्य की शिक्षाएं उसके बारे में श्रवण करेंगे। खास करके शाम को मुख्य विषय रहेगा कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे, इस श्री संप्रदाय का जो विशिष्ट अद्वैत दर्शन है फिलोसफी वो क्या है, और साथ साथ में ये विशिष्ट अद्वैत दर्शन के साथ हमारा अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का जो समन्वय है या पार्थक्य है उसके बारे में शाम को सुनेंगे। ये जो संध्या में गौरार्ती के बाद होने वाला प्रवचन वो भी बहुत मुख्य है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम समझ पाएंगे किस प्रकार से हमारा ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत कि चारों सिद्धांतों से चारों संप्रदाय के सिद्धांतों से निराला है, इस बात हम शाम को समझ पाएंगे। तो खैर हम लोग अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य की जीवनी के बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वैसे आप सभी लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य को जानते होंगे, वे कौन थे? श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे या मुख्य प्रचारक थे श्री संप्रदाय का। वैसे हम सबको पता होना चाहिए कलयुग में केवल 4 ही ऐसे संस्थाएं हैं या संप्रदाय है जिस संप्रदाय से या जिस संस्था से कोई भी जीव यानी कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो उसका गंतव्य निश्चित रूप से वैकुंठ होगा। वैसे पद्म पुराण में इस बात का प्रमाण है, संप्रदायो विहीनाये मंत्रस्ते विपलो मतः अतः परो भविष्यन्ति च परो संप्रदायिनः। संप्रदाय के बिना अगर हम कोई भी मंत्र को दीक्षा के बिना प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा के बिना गुरु के बिना अगर कोई भी मंत्र को हम जप करते हैं तो उस मंत्र विफल जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है, ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है। इसीलिए अतः कलौ भविष्यन्ति, इसीलिए कलयुग में 4 संप्रदाय बनाया गया है कलयुग के लिए। कलौ भविष्यन्ति चात्वारः संप्रदायिनः, 4 संप्रदाय इसीलिए बनाया गया है क्योंकि संप्रदाय के बिना कोई भी मंत्र अगर हम जपा करेंगे या उसका उपयोग करेंगे वो विफल जाएगा, इसीलिए कलयुग में 4 संप्रदाय बनाया गया है, ऐसे पद्म पुराण का कहना है। क्या क्या है 4 संप्रदाय उसके बाद वाला श्लोक में, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावना चापरस्ते कलौ भव्य की उत्कले पुरुषोत्तमे। 4 संप्रदाय है जो कि श्री ब्रह्म रुद्र और सनक, श्री मतलब लक्ष्मी जी, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी रुद्र शिव जी, और सनक ब्रह्मा जी के कुमारों से उनके पुत्रों से 4 संप्रदाय का प्रारंभ होता है। और कलयुग में ये 4 संप्रदाय के डिसिप्लिन सक्सेशन यानी उनके जो गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से शुरू होगा, जगन्नाथपुरी से, ऐसा बताया गया। उत्कल पुरुषोत्तम, उत्कल मतलब उड़ीसा का पुराना नाम है जो शास्त्रों में है, वहाँ जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वहाँ से ये संप्रदाय सब जो है पूरे कलयुग के लिए संसार में प्रचार होगा करके बताया गया।
और साथ साथ में ये पद्म पुराण असलियत में पद्म पुराण लिखे कौन थे? व्यासदेव जी। और उस समय द्वापर युग में व्यासदेव जी ने कलयुग के बारे में लिखे थे। और केवल संप्रदाय की बात ही नहीं, इस संप्रदाय में कलयुग में प्रचार करने के लिए कौन चार जन आएंगे, वो बात भी बताया मैंने। उन्होंने कहते हैं रामानुजम श्री ही श्री चक्र मध्वाचार्य चतुर मुह ईश श्री विष्णु स्वामी ने रुद्र निम्बादित्यम चतुर्थ, ये चार जन का नाम भी दे दिया कि जिस प्रकार चार संप्रदाय है उस चार संप्रदाय को कलयुग में आगे बढ़ाने के लिए, कलयुग में प्रचार करने के लिए चार मुख्य व्यक्ति आएंगे। श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए रामानुजाचार्य, ब्रह्म जी का संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय को बढ़ाने के लिए विष्णु स्वामी, और निम्बाकाचार्य आएंगे ये कुमार संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे चार जन का नाम उसी समय दिया गया था पद्म पुराण में। फिर बाद में इन लोगों ने कलयुग में आए थे प्रचार के लिए। तो भगवान से लक्ष्मी जी को ज्ञान मिला, फिर लक्ष्मी जी के बाद ये जो ज्ञान चलते आ रहा है उसे श्री संप्रदाय कहा जाता है। जैसे हमारा कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। हम भी प्रामाणिक है, इसलिए हम सब जो मंत्र जप करते हैं हम सब का गंतव्य कहाँ निश्चित है? वैकुंठ या गोलोक वृंदावन। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के संप्रदाय में उनके शिष्य में से आते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य होते हैं माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी का के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी का से दीक्षा लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से ये हमारा गौड़ीय जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा है वो चलते आ रहा है। तो आज हम लोगों ने ये जो श्री संप्रदाय है उसका जो मूल आचार्य है रामानुजाचार्य, उनके बारे में सुनेंगे। जिस प्रकार से हमारे ब्रह्म संप्रदाय का मूल आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। उस प्रकार से श्री संप्रदाय का मूल आचार्य रामानुजाचार्य। पद्म पुराण में इन लोगों का नाम है और श्री संप्रदाय का नाम आने मात्र से रामानुजाचार्य हमारे चेहरे में आ जाते हैं, हमारे मन में आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री संप्रदाय का सबसे पहला आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय का सबसे पहला आचार्य नहीं थे, ये बीच में आए थे, मगर ये मुख्य आचार्य थे जो कि मास प्रीचिंग किए थे या श्री संप्रदाय को पूरे भारतवर्ष में प्रचार किए थे रामानुजाचार्य। परंतु रामानुजाचार्य के पहले भी श्री संप्रदाय में कई आचार्य आ चुके हैं, कई आचार्य आ चुके हैं। वैसे उनके मुख्यतः द्वापर युग के बाद में कलयुग की शुरुआत में 12 अलवर आए थे। अलवर जैसे हमारे 6 जन हैं गोस्वामी, वैसे श्री संप्रदाय के भी गोस्वामी हैं, उन्हें अलवर कहते हैं, 12 अलवर। ये सब बहुत बड़े बड़े गोस्वामियाँ थे, उनकी कथाएँ बहुत अद्भुत अद्भुत कथाएँ हैं। मगर ये रामानुजाचार्य बीच में आए हैं, लगभग 1017 सन 1017 में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था रामानुजाचार्य का। ये उससे पहले द्वापर युग के शुरुआत अंत में कलयुग की शुरुआत में भी बहुत सारे आचार्य थे जो कि श्री संप्रदाय को प्रचार उतना तो नहीं किए थे मगर उन लोगों ने थे श्री संप्रदाय। तो ये रामानुजाचार्य असलियत में भगवान आदिशेष यानी शेष नाग की सत्यावेश अवतार रामानुजाचार्य, ये किसके? शेष नाग के, आदिशेष के सत्यावेश अवतार थे ये रामानुजाचार्य। ये श्री संप्रदाय के भक्तों का या उनके संप्रदाय में मानना है, कहना है, उसका उल्लेख भी अनेकों शास्त्रों में दिया गया है। तो रामानुजाचार्य, उनके पिताजी का नाम था केशवाचार्य और माताजी का नाम था कांतिमती। तमिलनाडु के कांचीपुरम के नजदीक एक गांव है, उस गांव का नाम है भूतपुरी। उस भूतपुरी गांव में श्री रामानुजाचार्य सन 1017 में कांतिमती के गर्भ से ये प्रकट हुए थे। पिताजी का नाम था केशव आचार्य रामानुजाचार्य। असलियत में ये कांतिमती उनका और एक बहन था, उनका नाम था दीप्तिमती, और ये दोनों श्री शैल पूर्ण नामक एक महान भक्त के बहन थे। ये दोनों कांतिमती का विवाह हुआ केशवाचार्य से, मगर अनेकों दिनों तक इन दोनों का संतान नहीं हुआ। इसीलिए ये दोनों पति पत्नी कांतिमती और केशवाचार्य मद्रास में स्थित पार्थ सारथी भगवान का उपासना किए। अनेकों दिन पार्थ सारथी भगवान की उपासना करने के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्रकट हुआ। जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, उनके नाना जी यानी माँ का पिताजी जो है श्री शैल पूर्ण, वो आए थे बच्चे को देखने के लिए। और उन्होंने बच्चे को जैसे ही देखा, उनकी तेज और उनकी सौंदर्यता, उनको तुरंत लक्ष्मण की याद आई, भगवान श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनकी याद आया। तो इस उनका याद आने पर उनका नाम क्या रख दिए, रामानुजा। अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। राम के जो अनुज है लक्ष्मण, तो क्योंकि उनको लक्ष्मण का स्मरण आया उनका रूप देखकर, इसीलिए श्री शैल पूर्ण जो कि बच्चे के नाना जी, वे उनका नाम रखे रामानुजन। ये कांतिमती का बेटा था। और कांतिमती के और एक जो बहन थी उनका नाम था दीप्तिमती, उनका भी एक पुत्र हुआ था उस समय। इन्होंने भी, उनके नाना जी भी उनके पुत्र का नाम भी रख दिया था गोविंद। ऐसे दो भाई हुए थे, गोविंद और रामानुज, दो माँ के गर्भ से। बचपन से ही रामानुजाचार्य का जो स्वभाव है अत्यंत सौम्य, सरल, नम्र थे और अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी थे रामानुजाचार्य। धीरे धीरे से वे बड़े होते गए, उनका प्रत्योपनयन हुआ, ये जो जनेऊ संस्कार वो हुआ, और खास करके कम उम्र में ही उनका विवाह भी संपन्न हुआ। रामानुजाचार्य की विवाह हुआ एक सुंदर कन्या, उनका नाम था रक्षक कंबल, उनसे विवाह हो गया। रामानुजाचार्य के स्वभाव और उनके गुण के बारे में अगर व्याख्या करने जाए तो एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। उस जगह पर, खास करके कांचीपुरम शहर में और वो पूरा आजू बाजू में, एक महान आचार्य या वैष्णव वो प्रसिद्ध थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। ये कांचीपूर्ण को सभी लोग जानते थे, ये थे महान वैष्णव, परंतु ये शूद्र कुल के थे, शूद्र घर में जन्म हुए थे। शूद्र घर में जन्म होने पर भी ये भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त थे। अतः कांचीपूर्ण के बारे में सारे लोग जानते थे, यहाँ तक कि जितने बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, वे लोग भी कांचीपूर्ण को एक महान विष्णु भक्त के रूप में स्वीकार करते थे। हालांकि उस समय ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव ज्यादा था, कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, शूद्रों को दूर रखते थे, ये सब बहुत उस समय था जातिवाद। फिर भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने कांचीपूर्ण को स्वीकार करते थे बहुत उच्च कोटि के भक्त करके। ये कांचीपूर्ण कांचीपुरम में रहते थे, कांचीपुरम में भगवान का विग्रह है या भगवान निवास कर रहे हैं, वरदराज। वरदराज मतलब राजा, वो जो वर देने में राजा है, वरद तो मतलब देना, जो वर देने में राजा है वो वरदराज है, भगवान विष्णु या कृष्ण है वो। तो उनकी सेवा पूजा करते थे ये कांचीपुरम। कितने ऊंचे कोटि के भक्त थे वो कैसे पता लगेगा, ये रोज वरदराज से बातें करते थे। शाम को जब भगवान को सैया सुलाया जाता था, उस समय चामर डुलाते थे भगवान को, भगवान को रेस्ट देने के लिए। उस समय रोज पूछेंगे वरदराज, आज कौन कौन मंदिर में आए थे, वो भक्त आया था मेरे को भी ध्यान नहीं दे रहा था, वहाँ क्या हुआ आज, और ये सब बताएंगे। वो भक्त आए थे आपके पास, उन्होंने ये प्रार्थना कर रहे थे, सारे भक्तों का दुख भी बताएंगे भगवान को। ये दोनों बात करेंगे, बहुत लेट नाइट तक बात करेंगे। फिर भगवान बोले कि जाओ, अभी बहुत लेट हो गया, अभी आप चले जाओ ना, ठीक है आप अभी सो जाओ। इस प्रकार के थे कांचीपूर्ण। तो ये कांचीपूर्ण ये भूतपुरी गांव से होते हुए एक दूसरे मंदिर में भी सेवा करने के लिए जाया करते थे। और बीच रास्ते में रामानुजाचार्य के जो गांव है भूतपुरी था, ये रामानुजाचार्य उस समय बहुत छोटे थे, कांचीपूर्ण जब भी जा रहे थे तभी रामानुजाचार्य उनका दर्शन किए, तुरंत कांचीपूर्ण को प्रणाम किए और उनको अपने घर में स्वागत किए। बहुत देर वार्तालाप किए और बाद में कांचीपुरम जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा मैया की। तो रामानुजाचार्य कहने लगे कि हे कांचीपुरम, आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं। जैसे ही ये गुरु तुल्य शब्द को सुने, कांचीपुरम तुरंत जवाब दिए कि नहीं नहीं, आप इस प्रकार से मत बोलिए, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है और हम तो शूद्र हैं, शूद्र किसी का गुरु नहीं हो सकते हैं, ब्राह्मण हमेशा गुरु रहते हैं। तो इस बात को सुन के रामानुजाचार्य जवाब दिए कि हे कांचीपुरम, अगर ये 2 रुपये का जो धागा है मुझे आपका शिष्य बनने के लिए रोकता है, या ये ब्राह्मण कुल में जन्म होना अगर ये आपके शिष्य बनने के लिए रोकता है, तो ये ब्राह्मण कुल और ये ब्राह्मण की जो जनेऊ को दीख है, ये तुच्छ है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, अतः ये ब्राह्मण कुल और ये जनेऊ इसके सामने कोई मायने नहीं रखता है। जय कृष्ण तत्व बेटा सही गुरु है, जो कृष्ण के बारे में बतलाते हैं, कृष्ण को भगवान करके जानते हैं, केवल वही गुरु होने के लिए योग्य है। इस बात को ये छोटे से बालक रामानुजाचार्य ने बता रहे थे कांचीपुरम को, उससे पता लगता है कि ये बच्चा, ये जो रामानुजाचार्य, कितने बुद्धिमान और नम्र सरल और बचपन से ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य का स्वभाव है, जैसे ही उनका विवाह हुआ खास रक्षक कंबल से, विवाह के कुछ ही दिनों के बाद उनके जो पिताजी है केशवाचार्य, वो शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने के बाद उनकी माँ कांतिमती कहने लगी कि अभी मैं भूतपुरी में नहीं रहूंगी, अतः हमें ये गांव छोड़ना चाहिए। तो रामानुजाचार्य अपना पत्नी रक्षक कंबल और अपने माता कांतिमती को लेकर वो चले गए कांचीपुरम। कांचीपुरम एक छोटा सा शहर जैसा अभी भी प्रसिद्ध है, वहाँ की साड़ियों के लिए साड़ी बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का। हम इस बार गए थे तो ऑटो वाला ने सारा मंदिर घुमाया, बोला कि महाराज आप यहाँ पे आइए, कांचीपुरम में आए हो तो यहाँ का प्रसाद लेके जाना चाहिए। मैं बोला हाँ लेके जाऊँगा मंदिर से, ना मंदिर में नहीं, यहाँ के दुकान में मिलते हैं, वो क्या ना साड़ी, ना साड़ी के बिना अगर कोई यहाँ से जाता है तो उनका कांचीपुरम का यात्रा पूर्ण नहीं होता। मैं बोला भाई मैं साड़ी का किसको दूंगा अभी लेके। ऑटो वाला वो बतला रहा, मगर उस इस प्रकार से प्रसिद्धता को हमें नहीं जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि वहाँ पे वरदराज निवास करते हैं, रामानुजाचार्य वहाँ पे निवासी थे, कांचीपुरम वहाँ पे थे, इन सारे कथाओं को हमें याद रखना चाहिए। तो रामानुजाचार्य वहाँ पर गए कांचीपुर में। कांचीपुर में अभी उनका शिक्षा का समय आया, उनको स्कूल में जाना था, गुरुकुल में जाना था, पाठशाला में। वहां पर यादव प्रकाश करके एक बहुत बड़े पंडित थे, उनका पाठशाला बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे थे यादव प्रकाश की पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए, और इसी पाठशाला में रामानुजाचार्य भी भर्ती हो गए, किसके लिए, ये शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। परंतु बात यह था कि ये यादव प्रकाश थे मायावादी, ये मायावादी थे, ये शंकराचार्य के अनुयायी थे, अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी मायावादी मतलब क्या, जो शंकराचार्य ने ये मायावाद का प्रचार किए थे कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं, जीव आगे जाके भगवान बन सकता है, ये मायावाद है, ये अद्वैतवाद है। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, किसमें द्वैत नहीं, जीव में और भगवान में अंतर नहीं है, ये शंकराचार्य का कहना है। तो इनके अनुयायी थे ये यादव प्रकाश, ये पाठशाला के जो मुख्य पंडित थे, और उनकी पाठशाला में गए कौन, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य थे सब महान भक्त और वो बचपन से ही, अभी कैसे है ये तालमेल हुआ, कई सारे भक्त लोग खास करके उनके श्री संप्रदाय का आचार्यों का अलग अलग मत है। रामानुजाचार्य ऐसे मायावादी गुरु के पास क्यों गए, कुछ आचार्य कहते हैं कि रामानुजाचार्य जानबूझ कर गए इस मायावादी के स्कूल में ताकि उसका उद्धार कर सकें, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जो रामानुजाचार्य के माता वगैरह वे थे ब्राह्मण, परंतु वे कट्टर वैष्णव नहीं थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा बहुत अच्छा सा पढ़ लिख के विद्वान बन जाए, इसलिए उनको यादव प्रकाश के गुरुकुल में छोड़ दिए। अलग अलग मत देते हैं, जो भी हो रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के स्कूल में गए पढ़ाई करने के बाद। ऐसे उनका पढ़ाई चालू हुआ, रोज रोज वेदांत के ऊपर, वेदों के ऊपर व्याख्या हुआ करता था। यादव प्रकाश व्याख्या करते थे, रामानुजाचार्य उनके साथ सारे शिष्य सुना करते थे। मगर यादव प्रकाश की जो व्याख्याएं है, वो यादव प्रकाश की जो व्याख्याएं, वो रामानुजाचार्य को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो हमेशा मायावाद का व्याख्या करते थे और ये थे वैष्णव। एक बार ऐसा हुआ यादव प्रकाश छंदोग्य उपनिषद के एक मंत्र के ऊपर व्याख्या कर रहे थे। सुबह में व्याख्या किए, सभी बच्चे घर चले गए, दोपहर का समय था। रामानुजाचार्य अत्यंत गुरुनिष्ठ थे, वो गुरु की सेवा में लगे हुए रहते थे, हालांकि वो मायावादी हैं। दोपहर को अपने गुरु की सेवा कर रहे थे रामानुजाचार्य, तेल मालिश कर रहे थे शरीर में, और यादव प्रकाश उनके गुरु लेटे हुए थे। अचानक एक बच्चा आया स्टूडेंट और यादव प्रकाश को पूछे कि हे गुरुदेव, आप सुबह जो छंदोग्य उपनिषद के व्याख्या किए थे उसमें से एक मंत्र का व्याख्या मुझे समझ में नहीं आया, कृपया समझाइए। तो वो मंत्र वो बताए हैं, कप्यासम पुनरदीकम एवं अक्षिणी, ये मंत्र है। इस मंत्र की व्याख्या, इस मंत्र का अर्थ मुझे समझाइए करके वो बच्चा बोला, किसको, यादव प्रकाश को। यादव प्रकाश हंसने लगे और लेते लेते ही इस मंत्र के ऊपर व्याख्या करने लगे। उन्होंने ऐसे व्याख्या किया, कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, ये जो मंत्र, ये भगवान विष्णु की आंखों का वर्णन कर रहा है। पुंडरीक ये भगवान विष्णु का नाम है, अक्षिणी आंख है, तो भगवान विष्णु की आंखों का वर्णन ये मंत्र में है। तो कैसे है भगवान विष्णु की आंखें, कप्यासम। कप्यासम शब्द का अर्थ उन्होंने बताया, कप्यासम दो शब्द से बनता है, कपि और आसम, ये दो शब्द से कप्यासम बनता है। कपि मतलब बंदर और आसम मतलब बंदर की पिछला भाग, उनका बैठने का जो भाग है बंदर का, ये आसम का अर्थ है। और बंदर का पिछला भाग हमेशा लाल कलर का रहता है, अतः उन्होंने ये अर्थ बताया, भगवान विष्णु की आंखें बंदर की पिछले भाग की जैसा लाल है, ये व्याख्या की। इस प्रकार की व्याख्या सुनकर कोई भक्त विष्णु की कैसे सहन कर सकते थे, और वो भी श्री रामानुजाचार्य, वो उनके गुरु की मालिश कर रहे थे, मालिश करते करते गरम गरम आंसू गुरु के ऊपर गिरे। वो इस प्रकार की व्याख्या को सुनकर रोने लगे कि भगवान विष्णु, मेरे प्रिय भगवान विष्णु की व्याख्या इस प्रकार से कर रहा है, इनके उतने इतने सुंदर सुंदर आंखों का वर्णन बंदर के पिछले हिस्से के साथ ये तुलना कर रहा है। ऐसे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि गुरुजी हैं, और वो रोने लगे कि उनका आंसू रोका नहीं गया और वो आंसू गिरा वो यादव प्रकाश के ऊपर। तो यादव प्रकाश देखे कि रामानुज रो रहा है, रामानुज तुम क्यों रो रहे हो, तो वो बोलने लगे, जैसे गुरु पूछे बताए कि हे गुरुदेव, आप जो इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से किए, हमारे प्रिय भगवान की आंखों की सुंदरता का आप जो इस प्रकार से वर्णन किए, यह असल में सही व्याख्या नहीं है, यह गलत व्याख्या है। इस बात को सुन के यादव प्रकाश बहुत गुस्सा हो गए, अगर तुम मेरे व्याख्या से प्रसन्न नहीं हो तो तुम्हारे उत्तर, तुम्हारे इस प्रकार के जवाब से भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। हमारे परंपरा में कोई शिष्य गुरु के साथ इस प्रकार से वाद विवाद नहीं करता है, ऐसे बोले। रामानुजाचार्य चुप हो गए। फिर यादव प्रकाश बोलने लगे, अगर तुम्हें ये व्याख्या पसंद नहीं है और गलत लग रहा है तो तुम अपना व्याख्या बताओ, क्या जानते हो। बड़ा आया सेकंड शंकराचार्य, क्योंकि वो व्याख्या किसका था, शंकराचार्य का व्याख्या था। ये आया शंकराचार्य, सेकंड शंकराचार्य, ये अभी व्याख्या करेगा उपनिषदों के ऊपर। इस प्रकार सुनता खिली उड़ाया और उनको बोले कि तुम्हारा व्याख्या बताओ, अगर ये गलत है तो सही क्या है बताओ। तब रामानुजाचार्य अत्यंत नम्रता के साथ वो उस श्लोक का व्याख्या किए, खास करके कप्यासम शब्द का व्याख्या किए। देखिए उस समय ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जो कि ग्रंथों को पढ़े थे, पहले से व्याख्या था, वो इतना विद्वान थे कि वो खुद उस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। ये कप्यासम शब्द का अर्थ केवल बंदर का पिछला हिस्सा नहीं, ये दूसरे तरीके से भी इसका व्याख्या किया जा सकता है ना। वो कैसे? यादव प्रकाश ध्यान से सुनने लगे। एक छोटा सा बच्चा अपने गुरु को बतला रहे वेदों का व्याख्या संदर्भ उपनिषद का। ये कपि आसम इस शब्द को दो भाग में विभक्त करिए, कपि और आसम। ये कपि शब्द को फिर से दो भाग में करिए। कम जलम पीवती, जो जल को पीता है वो कपि है। ये कपि शब्द का अर्थ उन्होंने बताया। कम जलम पीवती यानी जो जल को पीता है, ये कपि शब्द का अर्थ है। कपि शब्द का अर्थ केवल बंदर ही नहीं, ये जो जल को पीता है उसको भी हम कपि कह सकते हैं। वो है सूर्यदेव। सूर्य हमेशा जल को शोषण करते यानी पीते हैं, है ना। ये उन्होंने व्याख्या किया। कम कपि मतलब कम जलम पीवती, जो जल को पीता है, जो पानी को पीता है वो है सूर्य। आसम मतलब खिलना। कपि मतलब सूर्य और आसम मतलब खिलना। सूर्य के उदय होने पर जो खिलता है वो क्या है? कमल, पद्म। सूर्य की उदय होने पर जो खिलता है पद्म, उनकी जैसा भगवान विष्णु की आंखें हैं यानी कमल नयन। ये भगवान विष्णु की आंखों का वर्णन है। बंदर का पिछला हिस्सा नहीं, इससे अपराध होता है भगवान के प्रति। इस प्रकार की व्याख्या से ऐसे व्याख्या क्यों नहीं हो सकता है करके रामानुजाचार्य तक अपने यादव प्रकाश को व्याख्या की। तो यादव प्रकाश एकदम गंभीरता से सुन रहे थे, ऐसे हंसी मजाक से उसको तो भगा दिए वहां से, उस बात को टाल दिए। परंतु अंदर ही अंदर यादव प्रकाश का डर पैदा हो गया कि ये बच्चा आगे जाके ये जो मायावाद है, शंकराचार्य का सिद्धांत है, ये जो शंकराचार्य का संप्रदाय, इसका सत्यानाश करने वाला है ये लड़का बड़ा होकर। इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। केवल यही नहीं, केवल ये एक ही मंत्र नहीं, ऐसे रोज कुछ ना कुछ मंत्र का व्याख्या करते थे। रामानुजाचार्य टोकते थे, बोलते थे कि सही नहीं है, फिर अपना सही उत्तर बताते थे। इन दिनों में वो खुद कई उपनिषद उनके ऊपर कमेंट्रीज भी लिखे थे रामानुजाचार्य बचपन से। मगर इस घटना के बाद यादव प्रकाश ने रामानुजाचार्य को कैसे मायावाद संप्रदाय को बचाया जाए उसका प्लानिंग किए। अंततः मतलब ये निष्कर्ष में पहुंचे कि ये बच्चे को बचपन से ही मार देना चाहिए, तभी जाके हमारा शंकराचार्य का जो परंपरा है वो सही रहेगा। तो वो गुरुकुल में रामानुजाचार्य को छोड़ के बाकी सारे शिष्यों को बुलाए मीटिंग करने के लिए। सब बच्चे आए, खासकर के गुरुकुल में रामानुजाचार्य का भाई गोविंद जो दीप्तिमती का लड़का, वो भी पढ़ाई करते थे, उनको भी नहीं बुलाए। बाकी सारे बच्चों को बुलाकर मीटिंग किए किस प्रकार से रामानुजाचार्य को मार डाले। सब लोगों ने प्लानिंग बनाया कि उत्तर भारत यात्रा में जाएंगे, गंगा नदी में स्नान करने के लिए। गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे, बहुत दूर रास्ता है, रास्ते में जंगल आएगा, जंगल में उसको मार के फेंक देंगे। वैसे गंगा नदी में स्नान करने से पाप भी धुल जाएगा और वापस आएंगे बोलेंगे कहीं जंगल में गुम हो गया या गंगा नदी में डूब गया, उनके घर में बता देंगे। बताइए, शिक्षक भी ऐसे सोच सकते हैं। गुरु बेचारा रामानुजाचार्य वैद्य अत्यंत सरल, इन सारे चीजों को ध्यान नहीं देते थे। फिर उनके घर में बताया माता को कि गंगा नदी में स्नान के लिए जाना है गुरुजी के साथ। लगभग 18 साल हो रहा था तभी रामानुजाचार्य को। कांतिमती खुश हो गई मगर दुखी भी थी, बच्चे को छोड़ रही थी दूर। क्यों? क्योंकि उस समय कोई ट्रेन इत्यादि तो नहीं था, चल के जाना था और बहुत लंबा है गंगा नदी साउथ से। खैर सभी लोगों ने मिलकर गंगा नदी में स्नान के लिए निकले। चलते चलते पूरा गुरुकुल के बच्चे, उसमें गोविंद भी थे और रामानुजाचार्य, चलते चलते आ रहे थे विंध्य पर्वतमाला, जो खासकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाग करता है ये बीच के जंगल। उस जंगल के रास्ते से आ रहे थे, बीच जंगल में एक दिन रुके और रामानुजाचार्य जंगल में एक जगह बैठे थे। गुरुजी और बच्चे बातें किए कि इस समय रामानुजा को इस जंगल में ही मार देना चाहिए और यहां से हम आगे चलेंगे। ये बात को सुन लिया गोविंद ने, जो उनके भाई के लड़के थे। उन्होंने सुनकर रामानुजाचार्य के पास दौड़ के गए और उनको सारी कथाएं बताए कि यादव प्रकाश आपको मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। रामानुजाचार्य अत्यंत भयभीत हो गए, और वो आश्चर्य हो गए कि गुरु ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो कभी सोचे भी नहीं थे कि यादव प्रकाश ऐसे कर सकते हैं करके। और गोविंद क्या किए, उनको वहां से भगा दिए। रामानुजाचार्य अपने प्राण बचाने के लिए यादव प्रकाश और उनके शिष्यों को छोड़कर तुरंत भागे। उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, घना जंगल था, रात भी होने वाली थी, और दौड़ते दौड़ते गए हैं। अचानक देखे कुछ दूरी पर दो पति, यानी एक पति और पत्नी दो जन उनको मिले। वो थे सवर जाति के, खास करके चिड़िया मारने वाले, हाथ में कुछ चिड़िया भी था, वाहन था, और पति पत्नी थे जंगल जंगली ड्रेस में, ये दोनों दिखाई पड़े। हमारे जो चारे सोचे इतना बड़ा घना जंगल में दोनों मनुष्य, वो पूछे आप कौन है, कहाँ जाएंगे? वे बोले कि हम सवर जाति के हैं, चिड़िया मारते हैं, और हम जाएंगे कांचीपुर, कांचीपुरम। कांचीपुरम जाएंगे आप क्यों? क्योंकि हमने सुना वहां पे वरदराज हैं, हम तो पापी हैं, कितने सारे पक्षियों को मार दिए हैं, वरदराज से प्रार्थना करेंगे हमारे पाप को मुक्त नाश करने के लिए। रामानुजाचार्य बोले कि मुझे भी कांचीपुर जाना है, तो चलो हम मिलके चलते हैं। ये दोनों पति पत्नी रामानुजाचार्य को लेकर कांचीपुरम के और दक्षिण की ओर निकले। और इधर यादव प्रकाश देखे रामानुजाचार्य नहीं है, बच्चों को बोले ढूंढो, सब लोगों ने ढूंढा, मिले नहीं। वो समझ गए कि कोई जानवर खा गया उनको। ये समझकर उन्होंने अंदर ही अंदर खुश हो गए, मगर बाहर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गोविंद था। गोविंद को दिखाना चाहते थे कि हम सच में दुखी हैं रामानुजा की वजह से। और गोविंद को सब मालूम था, फिर भी कुछ नहीं बताया, और सब मिलकर गए नदी में स्नान करने के लिए, उत्तर भारत आ गए तीर्थ में। उधर क्या हुआ, रात्रि हो गया, रामानुजाचार्य ये दोनों पति पत्नी के साथ हैं, जंगली लोग सबरी सबर और सबरानी के साथ हैं। रात्रि हो जाने के बाद सबरी सबरानी बोले कि आज रात को यहाँ रुक जाते हैं, और सुबह उठ के फिर आगे चलेंगे। कांचीपुर तो बहुत लंबा है, कई दिनों लगा था चल के आने के लिए, खास करके गंगा नदी तक पहुंचने के लिए कई 3 महीना कितना ऐसे लगता है, महीने भर लगता है। तो चल के जा रहे थे, रात्रि हुआ रुक गए, मगर वो जो सबरानी बोली मुझे प्यास लग रहा है, तो वो सबर बोला कि अभी रुक जाओ, सुबह होएंगे तो आपके लिए पानी ले आएंगे। रात भर सो गए, सुबह हुआ, रामानुजाचार्य बोले कि है बालक वहां पे कुआं है, वहां पे जाकर थोड़ा पानी लेके आओ, मेरी पत्नी को प्यास लग रहा है। तो रामानुजाचार्य गए, उस समय बड़े बड़े कुआं होते थे, कुएं में उतरे, पानी लेके आए, पानी पी गई वो माता जी, बोले कि मुझे और प्यास लग रहा है, फिर से रहा ऐसे 3 बार रहा है, बोले कि कितना पानी पी रही है ये, चौथी बार भी बोली मुझे प्यास लग रहा है। और चौथी बार जब भी पानी लेके आए तब ये दोनों नहीं थे वहां पर, ये पति पत्नी दोनों नहीं थे। तो बोले कि कहाँ गए, आजू बाजू में ढूंढे, बोले कि यहाँ छोड़ के चले गए कहीं। देखे वहां से ब्राह्मण आ रहा था, उन्हें पूछे महाशय आप कृपया बताएंगे कि कांचीपुर कितना दूर है यहाँ से? वो ब्राह्मण बोला आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आश्चर्य की बात है, यही तो कांचीपुर है, वो देखो वरदराज की मंदिर दिख रहा है शिखर, और तुम तो यादव प्रकाश के गुरुकुल के रामानुज हो ना, तुम तो हमारे गांव के हो, तुम ये ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो कांचीपुर कितना दूर है करके, तुम तो आगे कांचीपुर में ही हो। रामानुजाचार्य तब समझे मुझे जाने के लिए तो कितना दिन लगा था, मगर रात भर सोया और यहाँ कैसे पहुंच गया मैं। तब वो पता लगा लिए कि असलियत में ये जो दोनों कपुल थे, पति पत्नी थे, ये स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे। इस बात को स्मरण करने मात्र से ही उनके अंदर पूरा रोमांच होने लगा, और वो तुरंत ही कुंती माता की स्तुतियों को स्मरण करने लगे और सारे कुंती माता की स्तुतियों को गाने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसा अनेक स्तुतियां गाने लगे। स्तुतियां गाते गाते उनके अंदर विकार उत्पन्न होने लगा, मगर वे अपने आप को रोक लिए, क्योंकि कई स्त्रियां वहां पे पानी लेने के लिए आ रहे थे। फिर वो घर चले गए, घर में गए तो उनके माता डर गई, इतना जल्दी कैसे बेटा वापस आ गया, क्योंकि गंगा नदी नजदीक नहीं है। तो वो सारी कथाएं बताए तो माँ रोने लगी, बाद में दीप्तिमती डरने लगी क्योंकि उनका बेटा उनके साथ था। तो ऐसे रुके कुछ दिनों के बाद केशव यादव प्रकाश वापस आए, घर में आके देख रहे हैं कि यमुनाचार्य, तो वो नाटक करने लगे आप कहाँ चले गए थे, हम खुश हो गए आपको देख के, हम सोचे कोई जानवर आपको खा गया, आपके भगवान विष्णु आपको बचा लिए, अच्छा हो गया, कल से तुम मेरे गुरुकुल में फिर से आ जाना। रामानुजाचार्य किसी को मत नहीं बताए, वो भी किसी को नहीं बताए, रामानुजाचार्य फिर से उनके गुरुकुल में जाने लगे। ऐसे कई दिन चलते रहा, मगर कैसे तालमेल जम सकता, वो थे मायावाद और ये थे विष्णु भक्त, और मायावाद से हमेशा भगवान विष्णु के विरुद्ध जाया करता था। फिर से ऐसा हुआ कि एक बार वो व्याख्या कर रहे थे, ये सारा जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसके ऊपर वो व्याख्या कर रहे थे यादव प्रकाश। सर्वं खल्विदं ब्रह्मं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मं नेन नामास्ति किंचन, इस मंत्र के ऊपर व्याख्या कर रहे थे। सब कुछ ब्रह्म है, जो भी दिख रहा है, ये पत्थर ब्रह्म है, ये टेबल ब्रह्म है, आप ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, यानी हम सब भगवान हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, नेन नामास्ति किंचन। तो इसको सुन के वो टॉलरेट नहीं कर पाए रामानुजाचार्य, फिर से बोलने लगे, नहीं इसका व्याख्या इस प्रकार नहीं है, असलियत में सब कुछ ब्रह्म का है। सर्वम खल्विदं ब्रह्मम का अर्थ है ये सारा जगत भगवान का है, ब्रह्म का है, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान नहीं है, उसका व्याख्या शास्त्रों से फिर करने लगे। इस बात को सुनकर यादव प्रकाश बहुत गुस्से हुए और उनको बोले कि अगर तुम इतने भी पंडित हो, तुम जाओ मेरे गुरुकुल से निकल के खुद का ही कुछ गुरुकुल चालू कर दो ना। तो क्या हुआ, रामानुजाचार्य बोले कि अगर आपका यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। उस दिन से वो यादव प्रकाश के गुरुकुल में जाना छोड़ दिए, घर में खुद रह के पढ़ाई कर रहे थे, मगर उन्हें ऐसा लगा कि गुरु की आवश्यकता है। तो आपको याद है कांचीपुरम करके एक महान संत थे कांचीपुरम में, तो वरदराज के पास सेवा कर रहे थे, उनके पास गए, बोले कि आप कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। मगर वो थे नम्र भक्त, वो बोले कि मैं आपका गुरु नहीं बन सकता क्योंकि आप इतने बड़े विद्वान हैं और मैं रहा शूद्र जाति का। मगर उन्होंने बोले कि अगर ये विद्या से किसी के अंदर अहंकार आता है तो वो विद्या किसी काम का नहीं है, विद्या हमेशा विनय नम्रता को प्रदान करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, जो फल जो वृक्ष में फल भर जाता है वो वृक्ष हमेशा नीचे झुक जाता है, वैसा अगर किसी के अंदर बहुत सारा ज्ञान है उसका हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए, ये उसका सौंदर्यता है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण देने के बाद कांचीपुरम फिर भी उनको शिष्य नहीं बनाए, बोले कि ठीक है तुम एक काम करो, वरदराज की सेवा करो। क्या सेवा करो, गांव के बाहर एक कुआं है, रोज वरदराज के लिए पानी लाया। तो रामानुजाचार्य एकदम नम्रता के साथ सेवा स्वीकार किए और रोज पानी लाया करते थे। देखिए रामानुजाचार्य ऐसा नहीं सोचे मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, यादव प्रकाश को तर्क में हराया था, सारे शास्त्रों को नॉलेज है, मुझे कांचीपुर ने पानी लाने के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं सोचे। इसे कहते हैं नम्रता पूर्वक सेवा करना। कोई भी सेवा दी जाए भगवान के लिए वो बराबर से समझना चाहिए। नम्र सेवा मतलब खास करके भक्ति रसानंद महाराज व्याख्या एक बार बतला रहे थे कि नम्र सेवा मतलब वो जो गुरु हमको प्रदान किए, नम्र सेवा मतलब वो जिस सेवा को करने के लिए दूसरा कोई तैयार नहीं है। अगर तुम बहुत बड़े पंडित हो, अगर तुमको बोला गया टॉयलेट साफ करो जाके आश्रम का, तो बिना हिचकिचाए टॉयलेट साफ करना चाहिए। और साथ साथ में ये बोला गया कोई नहीं है प्रवचन देने के लिए, जाओ प्रवचन दो, 1000 लोग सामने बैठे हैं तो जाके बैठ जाना चाहिए व्यास आश्रम में प्रवचन देने के लिए। और ठीक उसी समय अगर बोला गया मंदिर में कोई मंदिर संभालने के लिए प्रेसिडेंट नहीं है, आपको संभालना पड़ेगा, तो आपको फिर प्रेसिडेंट की सेवा करना पड़ेगा। नम्र सेवा मतलब जो दिया गया उसको करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा नहीं, ऐसा ये नम्र सेवा रामानुजाचार्य करने लगे। ऐसा नहीं मैं इतना दिन का भक्त हूँ और न्यू भक्तों के साथ मिलकर मंदिर साफ करेगा, न्यू भक्त लोग मेरे को सम्मान नहीं देंगे अगर उनके साथ मिलकर मंदिर साफ करूंगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने पानी लाने लगे, रोज नम्र सेवा करने लगे। इधर क्या हुआ, श्री रंगम जो कि श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर है वहां पे भगवान है रंगनाथ। जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए प्राण क्या है, वृंदावन और मायापुर, वैसे श्री संप्रदाय के लिए प्राण है श्री रंगम, रंगनाथ जी का मंदिर। हम कैसे हमेशा सोचते हैं वृंदावन जाना है हमको, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, गोलोक वृंदावन। वैसे श्री संप्रदाय के सारे भक्तों का डेस्टिनेशन है श्री राम। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं ना वृंदावन में वास करने के लिए, मन में नहीं तो कम से कम वहां पे फ्लैट खरीद के रख लें। कितने सारे फ्लैट खरीद के रखे हम लोगों ने वहां रहेंगे। वैसे श्री संप्रदाय वालों ने श्रीरंगम में फ्लैट खरीद के रखते हैं, अंत समय में वहां बिताएंगे। ऐसे में सुन रहा था एक भक्त से, हम लोग रोज उठते हैं सुबह स्नान करके तिलक इत्यादि लगा के घर में बोलते हैं, मैं तो मैं श्रीरंगम जाके आता हूँ, पत्नी को बोल के और घर से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चल के जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मतलब रोज प्रैक्टिस करते हैं कि हम श्रीरंगम जाना है करके। ये श्री संप्रदाय के वैष्णव इतना प्रिय है श्रीरंगम। श्रीरंगम और रंगनाथ की कथा बता देने से श्री संप्रदाय के भक्तों के अंदर रोमांच उठ जाता है। वहां ये हेडक्वार्टर है श्री संप्रदाय का। तो वहां पे रामानुजाचार्य के समय यमुनाचार्य करके एक बहुत बड़े आचार्य थे। आप लोगों ने स्तोत्र रत्न ग्रंथ के बारे में सुना रहेगा, श्रील प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथों में इसकी परपोट में इसका उदाहरण देते हैं स्तोत्र रत्न। ये यमुनाचार्य का अंतिम समय हुआ था, तो सारे भक्तों ने पूछा कि आप जाने के बाद हमारा आचार्य कौन बनेंगे, कौन हमको गाइड करेगा। यमुनाचार्य बोले कि एक व्यक्ति है, उनका पूरे सिम्टम्स बताए, वो तुम्हें गाइड करेगा। वो कौन है? श्री रामानुज। वो रहता है कांचीपुर में। तो अंतिम समय में यमुनाचार्य बोले कि जाओ रामानुजाचार्य को लेके मेरे पास आओ। असलियत में रामानुजाचार्य यमुनाचार्य ये लोग ऐसे वैष्णव थे कि उनका ऐसे टारगेट था कि इस भौतिक संसार में कोई बचना नहीं चाहिए, सबको वैकुंठ लेके जाना उन लोगों का टारगेट था कि इस भौतिक जगत में कोई नहीं रहना चाहिए, सबको वैकुंठ जाना चाहिए। भगवान सोचे कि तुम लोग सबको लेके जाएगा तो मेरे सेवा इधर कौन करेगा। रघुनाथ सोचे, इसलिए यमुनाचार्य को बोले कि चलो तुम्हारा समय हो गया वैकुंठ। यमुनाचार्य बोले इतना जल्दी, मगर मुझे 8 दिन का समय चाहिए, 8 दिन का। रघुनाथ बोले क्यों? ना मेरे काम है। उस समय भगवान भक्तों से बातें करते थे, ऐसे भक्ति हुआ करते। क्यों 8 दिन चाहिए? क्योंकि ये 8 दिनों के अंदर रामानुजाचार्य आ सकते हैं कांचीपुर से। 8 दिन का रास्ता है, चल के जाएगा 4 दिन, आएगा 4 दिन। ट्रेन में जाओगे तो 1 रात में पहुंच जाओगे, 8 घंटे का रास्ता है कांचीपुर से श्रीरंग। तो महापूर्ण करके एक शिष्य को यमुनाचार्य ने भेजा रामानुजाचार्य को लाने के लिए। तो महापूर्ण गए रामानुजाचार्य को लाने के लिए। रामानुजाचार्य को लेके आते आते यमुनाचार्य का 8 दिन पूरा हो गया था। रघुनाथ बोले कि अभी तुम्हारा 8 दिन पूरा हो गया, मैं क्या करूं, चलो अभी तुम। यमुनाचार्य शरीर छोड़ के वैकुंठ में प्रवेश किए। रामानुजाचार्य अत्यंत प्रसन्नता से आ रहे थे कि मैं यमुनाचार्य का दर्शन करूंगा, इतना बड़ा आचार्य का। मगर वो आके वो जैसे ही श्रीरंगम में एंट्री किए, बहुत भीड़ भाड़ था और सुने कि यमुनाचार्य शरीर छोड़ दिए वैकुंठ चले गए। जैसे ही सुने, उनका शिष्य महापूर्ण रामानुजाचार्य वहीं पे बेहोश हो गए दोनों के दो। थोड़ी देर के बाद होश आया, दोनों उठे और जाके देखे कि आश्चर्य की बात है, रामानुजाचार्य शरीर तो छोड़े थे, शरीर में प्रसन्नता छा रहा था, शरीर से तेज निकल रहा था, एकदम शांत ऐसे लग रहा था कि वो आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। मगर अद्भुत घटना यह था, उनकी 3 उंगली बंद था, 3 उंगली बंद था यमुनाचार्य का। रामानुजाचार्य देखे 3 उंगली बंद क्यों है, उन्होंने सब लोगों को पूछा क्या यमुनाचार्य का हाथ ऐसा रहता है हमेशा, 3 उंगली हमेशा बंद रहता है। सभी लोग बोले कि नहीं, वो तो अभी ऐसा है, खोलने के लिए प्रयास की, नहीं खुल रहा है, 3 उंगली बंद है। रामानुजाचार्य समझ के और उन्होंने जोर जोर से घोषणा किए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भगवान विष्णु की चरण कमलों की भक्ति में हमेशा दृढ़ता से बना रहूंगा और पूरे भारतवर्ष में ये वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूंगा। वो जोर से बोलने लगे। जैसे ही इन्होंने प्रतिज्ञा लिया, यमुनाचार्य का 1 उंगली खुल गया। सब लोग आश्चर्य हो गए। वो फिर से जोर से प्रतिज्ञा लिया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भगवान विष्णु ही सर्वोपरि है करके प्रमाण करने के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर श्री भाष्य करके ये मैं वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य करके वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखूंगा, जो कि ये शंकराचार्य की मायावाद का खंडन होगा। तब उनका दूसरा मुख लिख लिया यमुनाचार्य का, सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। वो फिर से चिल्ला के प्रतिज्ञा किए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पराशर मुनि और व्यास देव की स्मृति के लिए हमारे संप्रदाय में महान दो भक्तों का नाम में पराशर और व्यास रखूंगा। तो उनका तीसरा उंगली भी खुल गया, तो सभी लोगों को पता लग गया कि यमुनाचार्य का तीन अतृप्त इच्छाएं थे, ये इच्छाएं पूरा नहीं हुआ था। मायावाद का खंडन, पूरी भारतवर्ष में वैष्णव सिद्धांत का प्रचार, और पराशर मुनि के स्मृति के लिए एक भक्त का नाम पराशर रखना चाहिए। जैसे हम लोगों के लिए अमल पुराण भागवतम है ना, वैसे श्री संप्रदाय के लिए विष्णु पुराण है, और ये विष्णु पुराण का वक्ता पराशर मुनि है, इसीलिए इसकी स्मृति में उनको एक भक्त का नाम पराशर रखना था। और सभी लोगों ने ये कन्फर्म हो गया कि यमुनाचार्य के बाद अगर कोई आचार्य हमारे लिए है तो वो कौन है? रामानुजाचार्य। सभी भक्त बोले, वो निकलने लगे कांचीपुर के लिए, सभी भक्त बोले कि रंगनाथ है, उनका दर्शन तो करके जाइए। मैं उस कठोर और निष्ठुर भगवान का दर्शन नहीं करूंगा जो मैं आने से पहले मेरे गुरु महाराज को लेके चले गए, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया, ये भाव है भगवान के प्रति। और वो चले गए रंगनाथ का दर्शन किए बिना, जाके उनके अंदर ये भक्ति और तीव्रता होने लगी। इधर यमुनाचार्य के बाद और एक आचार्य बने, वहां के तिरुवरंग करके एक आचार्य बने। यमुनाचार्य बोले कि आप संभालना मत, तब तक मठाधीश बने। और तिरुवरंग उधर यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने बहुत भक्ति करने लगे और भरतराज की सेवा करने लगे, कांचीपुरम से शिक्षाएं लेने लगे। इस बीच में ऐसा हुआ, फिर से उन्होंने कांचीपुरम को बोले कि मुझे कृपया शिष्य बना लीजिए, आप कृपया मेरे गुरु बनिए, मुझे दीक्षा दीजिए। मगर कांचीपुरम नहीं सुन रहे थे। वो सोचे कि ये सुन नहीं रहे हैं, मुझे इनका कृपा कैसे भी करके प्राप्त करना है। तो उन्होंने चालाकी की, रामानुजाचार्य वे अपने घर में अपनी पत्नी को बोले कि मैं कल कांचीपुरम को बुला रहा हूँ प्रसाद खाने के लिए। अगर महान वैष्णव का झूठा प्रसाद, जो कि महाप्रसाद, उसको स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा मिलता है। तो उन्होंने सोचे और कांचीपुरम को बोले कि हे भगवान, हे महात्मा, कृपा करके कल हमारे घर में प्रसाद पाने के लिए आइए। कांचीपुरम भक्त थे, बहुत चालाक, वो समझ गए कि ये रामानुजाचार्य का चाल क्या है, मेरा ये जो महाप्रसाद जूटा खाने के लिए प्लानिंग कर रहा। तो रामानुजाचार्य दूसरे दिन बुलाने के लिए जब भी आए मंदिर में कांचीपुरम को, कांचीपुरम रामानुजाचार्य आने से पहले दूसरे रास्ता से उनके घर में पहुंच गए और उनको पत्नी को जाके बोले कि चलो मेरे लिए प्रसाद बनाया ना, दे दो। रुको रुको, मेरे पति आएंगे अभी ना। नहीं नहीं, वो आएंगे, मेरा काम है भगवान का सेवा, जल्दी दे दो मुझे, खा के निकल जाऊंगा मैं। तो उनका पत्नी दिया और वो खाए निकल गए। उनका पत्नी पतिव्रता थी, पति की बहुत अच्छा सेवा कर रही थी, कट्टर ब्राह्मण थी मगर वैष्णव नहीं थी। उसे ये नहीं मालूम था एक वैष्णव क्या होता है और वैष्णव का प्रसाद क्या होता है। वो कट्टर ब्राह्मण थी और उसे उसकी पत्नी को ये मालूम था, उनकी पत्नी को, कि ये कांचीपुरम शूद्र जाति के है, इसीलिए वो कांचीपुरम खाके जाने के बाद वो सारा प्रसाद को लेके शूद्रानी को दे दिया, बर्तन वर्तन धो के गोबर से डिब्बा पोछा करके घर एकदम क्लीन रखा। रामानुजाचार्य का इच्छा क्या था? कांचीपुरम का प्रसाद स्वीकार करने के लिए, भक्तों का प्रसाद। रामानुजाचार्य आते बोले कि कांचीपुरम मिले नहीं, बोले कि नहीं वो तो खाके निकल गए। हाँ खाके निकल गए, फिर तुम फिर से क्यों खाना बना रही हो ना, वो तो शूद्र जाति के थे ना, और खाके गए उनका प्रसाद, उनका झूठा तुमको कैसे दे सकता था मैं, इसलिए मैं दूसरा बना रही हूँ। इस बात को सुनकर रामानुजाचार्य का सर दर्द हो गया, बोले कि कितना मूर्ख स्त्री है, कि कितना सुंदर अवसर था कांचीपुरम की कृपा प्राप्त करने के लिए, मगर तुमने गवा दिया हाथ से। बहुत क्रोधित हो गए स्त्री के ऊपर, बहुत चिल्लाए स्त्री को और वो वहां से चले गए। इस प्रकार से उनका वहां पर चल रहा था, कांचीपुरम के साथ कांचीपुरम का कृपा प्राप्त कर रहे थे मगर वो नहीं मिल रहा था। एक बार रामानुजाचार्य गए कांचीपुरम को, बोले कि हे कांचीपुरम, आप तो वरदराज से बातें करते हैं और आपको पता है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ कि गुरु के बिना शास्त्र तो ठीक से नहीं समझेंगे, मेरा बहुत कुछ प्रश्न है, मैं चाहता हूँ मेरे प्रश्नों का जवाब, तो आप कृपया वरदराज को जाके मेरे प्रश्नों का जवाब पूछिए। कांचीपूर्ण बोले कि ठीक है, मैं कल पूछ के आके बताता हूँ। और दूसरे दिन कांचीपूर्ण आके बोले कि वरदराज तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। याद रखिए, यमुना रामानुजाचार्य ने प्रश्न क्या था वो नहीं बताए थे, वो खाली ये बताए थे कि मेरा बहुत सारे प्रश्न है, जवाब चाहिए। कांचीपूर्ण आके बोलते हैं कि भगवान ने वरदराज तुम्हारा सारा प्रश्नों का जवाब दिया। रामानुजाचार्य बोले क्या है वो जवाब? सबसे पहला कि मैं परम ब्रह्म हूं। वरदराज कहते हैं कि विष्णु यानी मैं परम ब्रह्म हूं और मैं ही इस भौतिक संसार का उद्गम हूं। पहला, ये पहला प्रश्न था। दूसरा समस्या का समाधान था या दूसरा प्रश्न का जवाब था, जीव और परमात्मा अलग है और ये शाश्वत सिद्धांत है, ये हमेशा अलग ही रहेंगे, ये दूसरा उनका जवाब था। विष्णु की चरण कमलों में भक्ति या सेवा ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और ये मुक्ति है, ये तीसरा जवाब था। चौथा जवाब था, अगर मेरा भक्त, कोई मेरा भक्त है, मेरे शरण में आया है, मगर मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय अगर उसको मेरा याद नहीं आ रहा है, नहीं किया, मेरा याद नहीं कर पाया, फिर भी मैं उसको वैकुंठ लेके जाऊंगा, ये वरदराज का प्रतिज्ञा है। हमको पता है ना भगवद्भाव, भगवद्गीता में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा परिवरण, जो अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय भगवान का चिंतन स्मरण करता है वो भगवत धाम जाता है, और हम जीवन भर हरे कृष्ण करेंगे और उस क्षण में भूल जाएंगे, तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का जवाब देते हैं वरदराज, कहते अगर कोई मेरे शरण में आ गया, मेरा भक्त है, और ऐसे एक्सीडेंटली डेथ हुआ, उसका अचानक मृत्यु हुआ और उसी क्षण के लिए वो भूल गया, मेरे को याद नहीं कर पाया, तब पर भी मैं उसको वैकुंठ में लेके जाऊंगा, ये वरदराज प्रतिज्ञा करते हैं। बात को सुनकर रामानुजाचार्य खुश हो गए। और कोई मेरा शरण में आया है, मेरा भक्त है, उस शरीर छोड़ने पर मैं खुद आता हूं उसको वैकुंठ लेके जाने के लिए। पांचवा, छठा बोले हैं और छठा पर्सनली था रामानुजाचार्य के लिए। क्या था? रामानुजाचार्य को बोलो वो जाएगा और यमुनाचार्य का जो शिष्य है महापूर्ण उससे दीक्षा लेगा। रामानुजाचार्य खुश हो गए, उसी क्षण निकल गए महापूर्ण से दीक्षा लेने के लिए। उधर श्रीरंगम में क्या हुआ, यमुनाचार्य जाने के बाद यमुनाचार्य जैसा प्रवचन देने के लिए कोई नहीं था, भले ही तिरुवरण करके एक आचार्य थे मठाधीश, मगर यमुनाचार्य जैसा शास्त्रों का व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, लोगों को समझा नहीं पा रहे थे महान भक्त। तो उन्होंने इष्ट गोष्ठी बुलाया, बात किया कि हमारे गुरु जाने के बाद हमारा गुरु जी का स्थान पूर्ण नहीं हो रहा है, अधूरा है, अभी कौन उसका स्थान को पूर्ण करेगा, हमें चाहिए कि रामानुजा को बुलाना है। आपको पता है तीन प्रतिज्ञा लिया था उसने, तो सभी लोगों ने एक साथ बोले कि हाँ हाँ बुलाना चाहिए रामानुजाचार्य। कौन बुलाएगा? महापूर्ण को भेजा जाए, जो पहले गए थे उन्हें लाने के लिए, उन्हें भेजे, उन्हें दीक्षा लो, दीक्षा दे के लेके आओ, मगर उन्हें यह मत बताओ श्रीरंगम लेने के लिए मैं आया हूँ, दीक्षा दो, उनके साथ रुको, उनका हृदय का परिवर्तन करो और लेके आओ। ये गए, रास्ते में रामानुजाचार्य मिले। देखो भगवान कैसे गुरु और शिष्य का भेंट कराते हैं, शिष्य को आदेश दिए महापुरुष से दीक्षा लो, उधर गुरु को आदेश मिला के जाके रामानुजाचार्य को दीक्षा लो। इसलिए गोपाल हमेशा कहते हैं हमारे निष्ठा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमारे निष्ठा से भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये भगवान का अरेंजमेंट रहता है दीक्षा का, गुरु का। तो वहां मिल गए तो महापूर्ण बोले मैं दीक्षा देने के लिए आया हूँ। रामानुजाचार्य बोले मुझे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ मैं आपसे। बोले कि अच्छा हो गया, चलो कांचीपुर में दीक्षा दूंगा, कांचीपुर में तुमको दीक्षा दूंगा। नहीं नहीं, एक बार मैं ऐसे ही धोखा खाया था, यमुनाचार्य को मिलने के लिए मुझे लेके गए, मैं पहुंचते पहुंचते यमुनाचार्य ही चले गए, इसलिए मुझे इसी क्षण दीक्षा दीजिए यहाँ पर, क्या मालूम कांचीपुर जाते जाते फिर से कुछ हो जाएगा। तो इसलिए उसी स्थान में उन्होंने क्या किए, दीक्षा दिए रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को दीक्षा दिए वैष्णव दीक्षा, उसमें वैष्णव दीक्षा में उन लोगों का ऐसा होता है लोहा को गर्म करके ऐसे बहुत सारे चिन्ह लगाएंगे शरीर में, खास करके शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होता है, मुद्रा कहते हैं उसको, वो दीक्षा प्रोसेस है हम लोगों का, हम लोग का ऐसा नहीं, अच्छा है ना, खाली हरे कृष्ण चार नियम पालन करो, 16 माला जपा करो। तो मुद्रा इनिशिएशन सेरेमनी हो गया, रामानुजाचार्य निवेदन करके गुरु जी को, साथ में उनकी पत्नी भी आई थी महापूर्ण के, अपने घर में बुला के कुछ दिन रखे और रोज शास्त्रों का चर्चा करते थे गुरु शिष्य बैठकर, बहुत प्रसन्न थे रामानुजाचार्य। मगर ऐसा हुआ एक दिन रक्षक अम्बल जो रामानुजाचार्य की पत्नी, वो महापूर्ण की पत्नी को बहुत चिल्लाई, गुरु पत्नी को, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही कुएं से पानी निकाल रहे थे। पानी निकालते निकालते क्या हुआ, महापूर्ण की पत्नी गुरु पत्नी के मटके से थोड़ा सा पानी इसके मटके में गिर गया, तो उसने चिल्लाने लगी, तुम गुरु पत्नी हुई तो क्या हो गया, हम तुम्हारे जात से ऊंचे जात के हैं, हम ब्राह्मण हैं, और तुम्हारा पानी मेरे पानी में गिर गया, अभी मेरा पानी अशुद्ध हो गया, तुमको देखना चाहिए, संभालना चाहिए। तो बिचारी महापूर्ण की पत्नी थी बहुत नम्र, मगर इस अपमान को सहन नहीं कर पाई, उधर ही बैठ के रोने लगी और जाके अपने पति को सारी बातें बताई। महापूर्ण बोले कि हमको अभी यहाँ नहीं रहना, आए थे रामानुजाचार्य को लेके जाने के लिए मगर वो छोड़ के चले गए। रामानुजाचार्य बाहर से आके देखे गुरुजी नहीं है, बोले कि कहाँ गए गुरुजी, बोले कि मुझे क्या मालूम, तुम्हारे गुरुजी आधुनिक जमाने के हैं, थोड़े से बात में गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं बड़े भक्त हैं करके तुम्हारे गुरु, और थोड़ी सी बात में गुस्सा हो गए, मैं क्या बोल दिया, तुम्हारा पानी मेरे पानी में क्यों गिरा करके थोड़ा सा तो बोला। रामानुजाचार्य के सर पे बहुत बड़ा सा पत्थर गिरने जैसा लगा, ये मेरी पत्नी का हद कर दिया, अभी तुम तो उसको बहुत सारे अनाप शनाप चिल्लाने लगे रामानुजाचार्य। फिर से एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण भिक्षुक उनके घर में भिक्षा लेने के लिए आया था, उसको भी भगा दिया, बोले कि और कोई जगह नहीं मिला तुम्हारे गांव में, मेरे घर में आना था, भागो यहाँ से। तो ब्राह्मण दुखी होकर जा रहा था, रामानुजाचार्य मिले, बोले कि महाशय आप दुखी क्यों है, ना मैं तुम्हारे घर में गया था, तुम्हारा पत्नी भगा दिया गाली दे के। रामानुजाचार्य तय कर लिए कि अभी मुझे घर में रहने लायक घर नहीं है, और इस पत्नी के साथ रहना लायक ये पत्नी नहीं है, इसी क्षण त्याग देना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, चाय चाहिए या मैं चाहिए, मुझे चाहिए या चाय चाहिए, बस चाय, छोड़ दिए घर, उसी क्षण छोड़ दिए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखे थे। वैसे श्री रामानुजाचार्य बोले कि इसी क्षण मुझे घर छोड़ना है। ब्राह्मण को बोले कि एक सेवा करोगे, बहुत सारा तुमको डोनेशन दूंगा, ना क्या, एक लेटर दूंगा, वो लेके खाली मेरे पत्नी को दे देना। क्या लेटर, लेटर में लिखे हैं ससुर जी जैसे लिख रहे हैं, यानी उनकी पत्नी के पिताजी का लेटर ऐसा लिखे, और प्रिय दामाद जी मेरे छोटी बेटी का शादी है और मेरे बड़ी बेटी को भेजो घर में ताकि वो सेवा करेगी, और चाहे तो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी आ जाओ, नहीं तो चलेगा, तो मेरे बेटी को भेज देना क्योंकि बहुत सेवा है, और ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण ने लेटर लेके लिया और वो लड़की पढ़ने लगी, उनकी पत्नी, वो समझी कि मेरा पिताजी का लेटर आया है, बहुत खुश हो गई, और रामानुजाचार्य आने से पहले ही ब्राह्मण के साथ चली गई कदर किधर, उनके पिताजी के गांव। रामानुजाचार्य खुश हो गए, बोले कि अच्छा मौका अभी संन्यास लेने का, वो लाल कपड़े इकट्ठा किए, डंडा इकट्ठा किए और सब लेके कहा वरदराज के पास गए, और वरदराज की कृपा से वहाँ पे कांचीपुर आ गए। कांचीपुर को बोले कि कृपया मुझे संन्यास चाहिए, और कांचीपुर वहाँ पे उनका संन्यास दे दिए। उस समय रामानुजाचार्य का नाम पड़ गया यतिराज, यति मतलब संन्यास, संन्यासी, और राज मतलब राजा, संन्यासियों में जो राजा, उनका नाम पड़ेगा यतिराज करके, वहाँ नाम पड़ा। फिर वो संन्यासी बने, संन्यासी बनने के बाद उन्होंने प्रवचन देना चालू किया, बड़े बड़े व्याख्यान करते थे शास्त्रों के ऊपर, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, कई फॉलोअर्स बने कांचीपुर में ही, खास करके उनका सबसे पहला शिष्य थे कुरेश और दासरथी, दो शिष्य थे, बहुत बड़े बड़े भक्त थे, बहुत विद्वान भी थे। आप सबको पता है एक मायावादी के पास पढ़ाई करते थे वो, यादव प्रकाश करके, एक बार रामानुजाचार्य सन्यासी बनने के बाद प्रवचन दे रहे थे, यादव प्रकाश की माँ देख रही थी, और वो जाके अपने बेटे को बोली कि बेटा तेरे को रामानुज की शरण में जाना चाहिए, उसके शिष्य बनना चाहिए। यादव प्रकाश बोले क्या, वो मेरा शिष्य है, मगर उनकी माँ बोली कि नहीं उसके शिष्य बनना चाहिए। वो सोचने लगे, आके वो सोच में पड़ गए, असलत में जब से रामानुजाचार्य अपने गुरुकुल से निकाल दिए थे उसी दिन से उनका मन नहीं लग रहा था, वो सोच रहे थे कुछ बहुत बड़ा सा गलती किया, कुछ तो पाप कर दिया मैंने, कैसे पश्चाताप करूं, प्रायश्चित कैसे करूं, सोच रहे थे। तो जाके देखे सच में रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य बन गए थे, कांचीपुर्ण के पास जाके बोले अच्छा आपसे तो तुम्हारे विष्णु बात करते उनके पूछो ना मुझे क्या करना चाहिए। कांचीपुर्ण दूसरे दिन आके बोले कि वरदराज बोले तुम्हें रामानुजाचार्य का शिष्य बनना चाहिए, फिर भी उनका मन नहीं मान रहा है। क्या करो वो गए रामानुजाचार्य के। एक्चुअली उस दिन रात को सपने में एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति आया तेजस्वी, बोला कि हे यादव प्रकाश तुम्हें रामानुजा का शिष्य बनना चाहिए। वो बोले अभी हद हो गया, अभी रामानुजाचार्य के पास गए और जैसे रामानुजाचार्य उनको देखे व्यास आसन से तुरंत उठे, उन्हें प्रणाम किए और लाके और एक ऊंचा आसन देके बिठाए। मगर यादव प्रकाश भावुकता से वशीभूत होने वाले व्यक्ति नहीं थे, पंडित थे, मायावादी थे। मायावादी तुरंत भावुकता से वशीभूत नहीं होते, उनको प्रमाण चाहिए, शास्त्र प्रमाण। बोले कि हे रामानुज मुझे फिर भी अभी भी शंका है कि विष्णु परम सत्य है करके, वो एक व्यक्ति है करके, क्या आप मुझे शास्त्रों से प्रमाण दे सकते हैं? रामानुजाचार्य हंसने लगे और बोले कि हाँ मगर मैं नहीं, मेरा शिष्य आपको समझाएगा। पुरेश को बोले कि आप कृपया इनको समझाइए कि कैसे भगवान विष्णु परम सत्य है। पुरेश ने बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा यादव प्रकाश को समझाए कि किस प्रकार से ये विष्णु भगवान है करके। तो उन्होंने स्वीकार किया, रामानुजाचार्य से शिष्य दीक्षा लिया, उनका नाम बन गया गोविंद दास, उनका नाम पड़ गया। उस समय 80 साल के वृद्ध थे रामानुजाचार्य, तभी तभी जवान थे, उस समय उनका दीक्षा हुआ और उनका नाम पड़ गया गोविंद दास। देखिए अपना गुरु को भी दीक्षा दिया। फिर वहां क्या हुआ, अभी तक रामानुजाचार्य श्रीरंगम नहीं गए थे, तो श्रीरंगम के सारे भक्त तड़प रहे थे कि कौन यमुनाचार्य का स्थान को पूर्ण करेगा। सभी लोगों ने से रंगनाथ जी से प्रार्थना की है, रंगनाथ कृपया रामानुजाचार्य को यहाँ बुला लीजिए। रंगनाथ बोले कि ठीक है अभी क्या करूं, क्योंकि तभी तो बात करते थे ना भगवान। रंगनाथ ये बहुत सुंदर कथा है कैसे रामानुजाचार्य श्रीरंगम गए। रंगनाथ जी क्या किए, एक लेटर लिखे किसके लिए, वरदराज के लिए। वरदराज कौन है, श्रीरंग कांचीपुरम की भगवान। रंगनाथ कौन है, वही विष्णु, वो श्रीरंगम के रंगनाथ। अभी इन दोनों की लीला देखिए। रंगनाथ जी लेटर लिखे किसके लिए, वरदराज के लिए, कि हे वरदा या हे वर देने में प्रमुख राजा, तुम्हारा वांटिंग है मुझे मालूम है, रामानुजाचार्य तुम्हारा वांटिंग है, मगर तुम प्लीज ये समझो कि हमारा नीड है, हमारा आवश्यकता है, यहाँ पे हमारे भक्तों की आवश्यकता है रामानुजाचार्य का। तुम्हारा तो वांटिंग है, तुम चाहते हो उसको, मगर चाहने से आवश्यकता ज्यादा है, हमारा आवश्यकता है, क्या तुम हमारे लिए रामानुजाचार्य को दे सकते हो? ऐसे करके भगवान रंगनाथ लेटर लिखते हैं भगवान वरदराज के लिए। अभी वो लेटर लेके एक भक्त जाता है कहाँ, कांचीपुरम। कांचीपुरम में जाते हैं, वो लेटर दिया, वैसे रोज की जैसा कांचीपुरम, जो कांचीपुर वरदराज के सेवक थे, वो चामर डुलाते डुलाते बात कर रहे हैं किससे, वरदराज से। भगवान पूछे कौन कौन आ जाया, क्या क्या स्पेशलिटी आज का दिन का, वो बताते बताते बोले कि वो एक भक्त आया है रंगनाथ जी के वहां से। अच्छा क्यों, कुछ विशेष काम है क्या? ना हाँ, वो आपके लिए खत भी लेके आया है। कौन खत भेजा, ना रंगनाथ जी, रंगा ने मेरे लिए खत भेजा है, चलो मैं तो पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ के सुनाते हैं, हे वरदा, हे वर देने में प्रमुख, और आप मुझे ये रामन वरम ददाती इति वरद, वर देने में जो श्रेष्ठ है वो वरद है, तो आप मुझे ये वर में दे दीजिए आपके रामानुजाचार्य को। ये लेटर जैसे ही सुना वरदराज, भगवान वरदराज को तुरंत गुस्सा हो गए, ये क्या अनाव सनाव लिखा उसने, भले ही मैं वर देने में श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, त्याग मंडप के लिए मेरा प्रसिद्ध है मेरा स्थान, इसका मतलब ये थोड़ी किसी को अपना जान ही मांग दे तो वो दे देगा, मुझे कुछ संपत्ति मांगना चाहिए, कुछ धन दौलत मांगना चाहिए, कुछ और मांगना चाहिए, वो सीधा मेरा प्राण ही मांग ले रहा है। और रंगा क्या समझता है आपने आपको, क्या मेरा प्राण भी मैं उसको दे दूंगा? मतलब श्री रामानुजाचार्य वरदराज के लिए प्राण जैसा है, इतना प्रेम करते थे वरदराज रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य को मांगा, इसका मतलब उनका प्राण को कोई मांग रहा है। तो भगवान बोले कि मैं मेरे प्राण को कैसे दे सकता हूँ, अगर मैं मेरा प्राण को दे दिया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये भगवान का भाव भक्त के प्रति, बताइए तो कितने ऊंचे कोटि के भक्त हुए रहेंगे। बोले कि एक काम करो, ये कभी नहीं हो सकता, मैं मेरे प्राण को मेरे से जाने नहीं दे सकता हूँ, तुम एक काम करो, सुबह उसको बुलाओ जिसने लेटर लेके आया, उसको मेरा आशीर्वाद देना, मेरा चरणामृत देना, मेरा प्रसाद देना और उसको भगा देना, बोलना रामानुजा नहीं दिया। तो ठीक वैसे किया गया। और वो भक्त वापस गया, रंगनाथ पूछे क्या हुआ? ना वरदराज मुझे आशीर्वाद दिए, प्रसाद दिए, चरणामृत दिए और भगा दिए। बोले कि रामानुजा नहीं मिलेगा, वो बोलते उनका प्राण है। रंगनाथ सोचे कि अभी क्या करना है, भक्तों से बात किए, भक्त फिर से रोने लगे, हमें रामानुज चाहिए, रामानुज चाहिए। रंगनाथ बोले कि ठीक है, मुझे कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। रंगनाथ तभी बातें करते थे भक्तों से, उन्होंने यमुनाचार्य के बेटे को बुलाया, उनका नाम था वररंग, यमुनाचार्य के बेटा। ये वररंग मधुर गीत गाने में एकदम एक्सपर्ट है, गंधर्व जैसा भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन और स्तुतियां गाते थे। तो वररंग को बुलाया कि ए वरा, वररंग बोले कि बताइए भगवान क्या सेवा है, क्या मेरे लिए एक सेवा करोगे प्लीज? तो वररंग बोलते कि आप इस प्रकार से निवेदन नहीं, मुझे ऑर्डर दीजिए, आपको मुझे आदेश देना चाहिए, आप तो भगवान है ना। नहीं, आदेश नहीं, बस तुम्हें जाना है, कांचीपुर जाना है और वहां पे वरदराज की प्रसन्नता के लिए गाना गाना है। तब क्या होगा ना, वहां पे वो वरदराज को एक गीत बहुत पसंद है, वो है देव गीत करके, जो देवताओं के द्वारा गाया जाता है देव गान। ये देव गान को वहां गाओ, ये गाना को गाने से वरदराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको बोलेंगे वर मांगो, तभी मत मांगना। वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे, पूरा एक्सटेसी में आ जाएंगे और पूरा जिद करेंगे, तुम्हें वर देना ही है, वर देना ही है, उसके बिना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको वर मांगो मांगो। जब एकदम एक्सटेसी में आ जाएंगे और वो प्रमाण करेंगे कि हाँ मैं दूंगा, वचन देता हूँ, तुम जो मांगोगे वो दूंगा, तब जाके उनको बोलना कि हमें रामानुजा चाहिए। बोले कि मैं वैसे ही करूंगा। वररंग वहां गए, तभी एक उत्सव हो रहा था भगवान का, विवाह उत्सव। वहां जाएंगे कांचीपुर, देखेंगे एक विवाह मंडप है, विवाह मंडप बहुत सुंदर सा बनाया गया मंडप, बाजू में एक तालाब है, वहां स्नान होता है, उत्सव होता है, पद्मावती लक्ष्मी जी से है, श्री और भू से विवाह होता है भगवान का। विवाह के बाद एक प्रथा है, खास करके उड़ीसा में, साउथ इंडिया में, जो वर और कन्या रहेंगे और वर और कन्या के सामने बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एक्सपर्टी दिखाएंगे, एक्सपर्टी समझते हैं, जो जिसमें पारंगम है उसको दिखाएंगे। और उड़ीसा में होता है शादी होता है तो वर घूमता है ना बैंड बाजा के साथ, और घूमते घूमते है वर घूमते समय उसके सामने बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े पत्थर उठाएंगे और बहुत सारा जादू दिखाएंगे, ऐसा होता है उड़ीसा में, अभी भी होता है, यहाँ नहीं दिखाया जाता, साउथ में ऐसा होता है। तो वैसे जैसे इन दोनों का, इन तीनों का शादी हो रहा था, वरदराज श्री और भू लक्ष्मी का शादी हो रहा था, उस शादी में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपर्टी दिखा रहे थे, जादू कर रहे थे, कोई पत्थर उठा रहे थे, कोई गाना गा रहे थे, कोई वाद्य बजा रहे थे, सभी को अपना नाम देना पड़ेगा, मैं ये एक्सपर्टी दिखाऊंगा। तभी इनका नाम हुआ आया वररंग का। तो एक जन ने बोला वररंग श्री रंगम से आए हुए हैं और देव गान को प्रस्तुत करेंगे, ऐसा। फिर उन्होंने देव गान गाना चालू किया, इतना सुंदर मधुर ढंग से उस गान को प्रस्तुत किए, गान को सुनते 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 भगवान इतने भाव विहोर हुए और लक्ष्मी को बोले कि मैं अभी डीटी फॉर्म में नहीं रह सकता, मतलब मैं विग्रह बन के अभी नहीं रह सकता हूं, मैं उस वररंग के साथ नाचना चाहता हूं। और तुरंत जो है वो विग्रह से स्वयं प्रकट हुए और वररंग के साथ नाचने लगे। तब भी वररंग अपना गान नहीं रोक रहे थे, वो गाते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे, वो इतना सुंदर नृत्य किए और वो नाचते नाचते सभी लोग नाच रहे हैं, वे भी नाच रहे हैं, लक्ष्मी और भूदेवी श्रीदेवी अपने आप को रोक नहीं पाए भगवान का नृत्य देख के। वो दोनों भी डीटी फॉर्म से स्वयं प्रकट हुए और वो भी नाचने लगे, सब लोग नाचने लगे, भगवान नाच रहे और बार बार भगवान वररंग को पकड़ के बोल रहे थे, वररंग मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो प्लीज, कुछ वर मांगो। बार बार मोतियों का हार निकाल के दे रहे थे, ये लो ये लो। वररंग बोल रहे थे कि हम तो रहे वैष्णव, आपके चरणों की सेवा के अलावा हमारा और कोई इच्छा नहीं है, ये हार लेके मैं क्या करूंगा। तो नाचते 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 एकदम एक्सट्रेसी में आए, तुम संसार में जो मांगोगे वो दूंगा। तो ये दोनों पत्नियां पकड़ लिए उनको, क्योंकि वो डर गए, क्या मालूम इन दोनों को बोल रहे हैं तुम मेरा पत्नियों को सेवा के लिए ले जा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों पत्नी पकड़ लिए, बोले कि ऐसे मत बोल देना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो भगवान बोलते कि ठीक है एक काम करना, मेरे दो पत्नी को छोड़ के संसार में और कुछ भी मांगो मैं देने के लिए। जब वररंग देखिए एकदम एक्सटेसी में आए हुए हैं भगवान वरदराज, तभी बोले कि हे भगवान मुझे हमें रामानुज चाहिए। तो धड़ाम से भगवान अपना नृत्य रोक दिए और वो सर पे हाथ लेकर बैठ गए, तुमने क्या मांग लिया, प्लीज प्लीज दूसरा कुछ मांगो ना, ये नहीं दे सकता, इसको छोड़ दो, मेरे दो पत्नी और रामानुज को छोड़ दो, और कुछ मांगो ना, नहीं उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में। तो भगवान रोने लगे, बोले कि नहीं रामानुज को नहीं दे सकता हूँ, रोके बोले कि कृपया रामानुज के अलावा कुछ और मांगो वररंग। वररंग एकदम कट्टर थे, वे अपने स्वामी भक्त थे, रंगनाथ के भक्त थे, वे रंगनाथ के आदेशों को पालन कर रहे थे, भले ही दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोले कि नहीं मुझे रामानुज आचार्य जी। भगवान बहुत निवेदन किए, बोले कि और कुछ ऑप्शन तो रामानुज के अलावा और कोई ऑप्शन चाहिए मुझे, एक ऑप्शन है। भगवान पूछो कि क्या ऑप्शन है, नहीं काम करो जितने शास्त्रों में सब तुमने बताया ना कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो करके, सत्य बोलते हो, अपना वचन सिद्ध करते हो, वो सारे सेंटेंस को निकाल दो और सब जगह ये सेंटेंस लिखो कि आप झूठ बोलते हो, अपना वचन पालन करो। कि ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्र पहले से है और ये एक ही चारा है कलयुग के लोगों के लिए। तो रामानुजाचार्य को बोले वरदराज, रामानुज मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। तो रामानुजाचार्य रोने लगे क्योंकि वरदराज को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो वररंग के साथ जाने लगे। वैसे जा रहे थे, वो सीन वैसा था जैसे एक बेटी बहुत लाड प्यार से अपने माता पिता के पास रहने के बाद उसका विवाह के समय जब भी जा रही है वो कैसे रोती है, और साथ साथ में जब भी माता पिता उसको विदाय करते हैं वे कैसे रोते हैं, ठीक वैसा सीन था। बार बार रामानुजाचार्य केवल पीछे मुड़ के ही देख रहे थे वरदराज को, और वरदराज और लक्ष्मियों के साथ रो रहे थे और रामानुजाचार्य को लेके वररंग जा रहे थे। ये सीन था कांचीपुर का। वहाँ क्या हुआ, श्रीरंगम में रंगनाथ बहुत खुश कि यहाँ रामानुज आ रहा है। तो वहाँ दो विग्रह है, रंगनाथ जी बहुत बड़े हैं वो लेटे हुए हैं अनंत सैया में, और एक विग्रह होता है उत्सव विग्रह, जैसे हमारे गिरधारी और छोटे गिरधारी भी हैं, हाँ हम जिनके अभिषेक करते हैं, ऐसे दो विग्रह वहाँ पे भी, एक बड़े रंगनाथ है और एक छोटे रंगनाथ है, मगर दोनों का मूड अलग अलग है ना, ये छोटे रंगनाथ का मूड अलग है, बड़े रंगनाथ का मूड अलग है। तो उस दिन क्या हुआ, बड़े रंगनाथ कभी नहीं उठते हैं, वो हमेशा सोए हुए रहते हैं, बड़े ऐसे विग्रह हैं आप देखे रहेंगे। तो वो उस दिन रामानुजाचार्य आ रहे हैं करके बड़े विग्रह पहले से उठ के और वो सीधा मेन गेट पे चले गए। बताइए छोटे रामानाथ देखे कि ये किधर गए, ये तो कभी नहीं उठता है, वो कभी नहीं उठते थे, और यात्रा में जाते हैं अभिषेक होता है खेलने के लिए जाते हैं तो छोटे विग्रह जाते हैं ना बाहर, बोले कि ये आज कहाँ गया। पूछा पुजारी को, ये महाशय तो हमेशा सोते, ये कहाँ गए ना, वो रामानुजाचार्य आ रहे हैं ना उनको रिसीव करने के लिए गए, कहाँ ना राजगोपुरम के पास गए। अब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये रंगनाथों इतना बड़ा मंदिर है, कुछ 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पे वो मंदिर है, सात बाउंड्रीज है ना, सात बाउंड्री है, उसका एक मेन गेट है उसको राजगोपुरम कहते हैं, वो राजगोपुरम के पास भगवान स्वयं जाके खड़े हैं रिसीव करने के लिए रामानुजाचार्य। तो ये छोटे रंगनाथ पुजारी को बोले कि पुजारी मुझे ले चलो वहाँ पर। पुजारी बोले कि नहीं नहीं ऐसे क्योंकि आपको ले जाने के लिए कितना व्यवस्थित चाहिए, बहुत सारे मंत्र बोलने वाले होना चाहिए, बहुत सारे छतरी, बहुत सारे शंख वाद्य, बहुत सारा होना चाहिए, आपको तो ठाट फाट से जाते ना। एक्चुअली उसको भोग मंडप कहते हैं श्रीरंगम, बालाजी को तिरुपति बालाजी या तिरुपति को कहते हैं पुष्प मंडप, और श्रीरंगम को कहते हैं भोग मंडप, कांचीपुरम को कहते हैं त्याग मंडप, और पार्थसारथी जो मद्रास में उसको कहते हैं ज्ञान मंडप, ऐसे अलग अलग नाम है। तो ये तो भोग मंडप है, आप तो भोग विलास में रहते हैं, तो आप ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा नहीं जा सकते। नहीं नहीं मुझे जाना है, वो जल्दी आ जाएगा तो देखेगा वो रिसीव करने के लिए आया है, मैं नहीं आया हूँ, क्या सोचेगा रामानुज, मुझे भी जाना है। तो ये छोटे और छोटे जो रमना थे उनका नाम क्या है मालूम है, नाम पेरमाल, पेरमाल मतलब भगवान, नाम मतलब मेरा। वहां के भक्त लोगों ने छोटे रंगनाथ जी को मेरे भगवान ऐसे प्रेम से बोलते हैं, मेरे भगवान, वो भी इतना प्रेम से भक्तों के साथ संबंध रखते हैं, नाम पेरमाल उनका नाम है ना। वहां पे छोटे रंगनाथ बोलेंगे तो समझ में आएगा, मगर उतना मूल भाव नहीं आता, वो वहां पे सब लोग बोलते हैं नाम पेरमाल आ रहे हैं। उत्सव होता है तो रंगनाथ जी छोटे रंगनाथ आ रहे हैं, ऐसे नहीं, मेरे मेरे भगवान आ रहे हैं, नाम पेरमाल आ रहे हैं, ऐसे वहां भक्तों का कहना। तो ये भी सतारी लेके चरणामृत लेके अपना अपना चरणामृत लेके गए। रामानुजाचार्य रामानुज आकर देखे, ओ आप दोनों यहाँ पे क्यों है, मैं आ रहा हूँ आपका दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं 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 आपको रिसीव करने के लिए हम आए हैं, चरणामृत दिए आशीर्वाद दिए, वहाँ पे वर भी दिए उनको, बोले कि मैं हम आपको वर देते हैं, आप इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में जो भी कार्य चाहिए आप सिद्ध कर सकते, खास करके आप जिस कोई भी व्यक्ति को चाहिए आप वैकुंठ में ला सकते हैं या वैकुंठ में भेज सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिए। साथ साथ में और एक आशीर्वाद भी मिला था रंगनाथ से उनको कि आप किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सिद्धियों को भक्त नहीं चाहते हैं, फिर भी भगवान उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं रंगनाथ। फिर रंगनाथ आए, रंगनाथ बहुत केयर करते थे रामानुजाचार्य का, क्यों, क्योंकि रामानुजाचार्य किसको छोड़ के आए हैं, वरदराज को, उनका स्नेह और प्रेम वरदराज के साथ है, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा उनको मन नहीं लगेगा तो भाग जाएंगे कहाँ पर, वरदराज के पास ना, इसीलिए जो खास करके नाम पिरमा छोटे रंगनाथ बहुत केयर करते थे, रोज पूछते थे पुजारी को रामानुज कहाँ है, उनका रहने का व्यवस्था कहाँ हुआ। खास करके रामानुजाचार्य आने से पहले पुजारी को रंगनाथ ने बोला कि ए मंदिर मेरे सामने ये घर होना चाहिए रामानुजाचार्य का, वो घर व्यवस्थित किए थे, सब व्यवस्थित करते थे। एक एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि रामानुजाचार्य का ध्यान कितना रखते थे भगवान रघुनाथ। एक बार ऐसा हुआ कावेरी नदी में स्नान करते समय और एक ब्राह्मण पुजारी भी स्नान कर रहा था रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य उस समय उस मंदिर में रहते थे, पूजा सेवा पूजा करते थे और शास्त्र की व्याख्या चालू किए थे। पुजारी को पूछे, वो ब्राह्मण को रामानुजाचार्य पूछे, आप ठीक हो, सब व्यवस्थित है, आपके घर ठीक से चल रहा है? वो ब्राह्मण बोला हाँ सब ठीक है, मगर क्या बताऊँ, मेरा जब भी एक बच्चा था उस समय भी मंदिर से इतना प्रसाद आ रहा था, अभी मेरे दो चार बच्चे हो गए फिर भी इतना ही प्रसाद आता है, तो कैसे हमारा परिवार चलेगा, ब्राह्मण ने बोला। तब ब्राह्मण आचार्य बोले आप चिंता मत करो, नाम परिमल आपका ध्यान रखेंगे, नाम परिमल आपको प्रसाद देंगे। रामानुजाचार्य बोल दिए तुम चिंता मत करो, नाम पेरुमाल जो छोटे रघुनाथ है वो तुम्हारा प्रसाद का देखभाल करेंगे, बस इतना बोल दिया और आ गए नहा धोके। तब से ये नाम पेरुमाल को टेंशन हो गया भगवान को, बल्कि रामानुज ने बोल दिया कि उसका प्रसाद का देखभाल कौन करेगा, मैं। और बड़े रघुनाथ को बोलने लगे देखा रामानुजाचार्य मेरा नाम लिया, मैं देखभाल करूंगा। तो रोज जब उनको भोग लगता है तो बहुत सारा सब आइटम में से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के बाजू में रखते हैं। पुजारी को बोले मेरे लिए बहुत बड़ा सा वो चाहिए टोकरी चाहिए, पुजारी बोले टोकरी क्या कर, तुम लेके आओ बस, रोज टोकरी में रख के लेके छोटे से बच्चे बीच सड़क में दोपहर को जब रेस्ट दिया जाता है भगवान को, मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर से निकल के टोकरी लेके रोज पुजारी के घर में जाते हैं। पुजारी सोचता है रामानुजाचार्य को मैंने बताया था, तो रामानुजाचार्य किसी भक्त से भेज रहे हैं और ये नाम करना भगवान रंगनाथ रोज छोटे बच्चे के रूप में टोकरी में लेके जाते हैं उनके पास। रामानुजाचार्य देखे अपने घर, उनका सामने ही था रामानुजाचार्य के पास, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा टोकरी लेके रोज कहाँ जाता है दोपहर को। एक दिन जाके पकड़ लिया उनका हाथ, बोले रुको तुम हो कौन, तो टोकरी थोड़ा सा ऐसे करके देखे तो नाम करना, बोले कि ओ आप ये क्या कर रहे हैं ना, आपने बोला ना मैं देखभाल करूंगा उनका, मैं उनका प्रसाद का देखभाल करूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ, रोज मेरा प्रसाद लेके मैं उनको पहुंचा रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, हम व्यवस्था कर। नहीं 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 आप किसी को बोलो मत मैं लेके जाऊंगा रोज, आपने बोला ना मुझे देने के लिए, ऐसा क्यों, अगर वो नहीं करेंगे क्या मालूम उनको वरदराज का याद आएगा चले जाएंगे। ऐसे रंगनाथ बहुत बहुत मतलब बहुत ध्यान रखते थे रामानुजाचार्य का। फिर रामानुजाचार्य बहुत वहाँ पर व्याख्या करने लगे, मगर खास करके उनको याद आया मेरा तीनों के तीनों प्रतिज्ञा अभी भी बाकी है, श्रीभाष्य लिखना, पराशर नाम रखना और पूरे भारत में प्रचार करना कभी होगा। तो उनके शिष्यों को बोले कि चलो मुझे अभी जाना है श्रीभाष्य लिखना, मगर श्रीभाष्य लिखने के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखने के लिए एक किताब की आवश्यकता था, वो था बोधायन वृत्ति, और ये बोधायन वृत्ति पूरे भारत में कहीं नहीं था, केवल कश्मीर में था। कश्मीर में शंकराचार्य मायावादियों का एक मठ था, उसका नाम था शारदा पीठ। तो रामानुजाचार्य बोले कि मेरे साथ एक ही व्यक्ति जाएगा, वो है कुरेश, कुरेश को लेके गए शारदा पीठ। 3 महीना लगा उनको शारदा पीठ में पहुंचे, वो पंडितों के साथ वार्तालाप हुआ, पंडित खुश हो गए, मगर उनको बोले कि रामानुजाचार्य मुझे बोधायन वृत्ति चाहिए। सब पंडित सोचे कि इतना पंडित है बोधायन वृत्ति देंगे तो ये हमारा मायावाद भाष्य का पूरा खंडन करेगा। इसलिए उन लोगों ने बोला कि हमारे पास बोधायन वृत्ति नहीं है, वो कवि का कीड़ा खा गया। रामानुजाचार्य दुखी हो गए। प्रातः तो सोए थे स्वयं शारदा देवी दुर्गा देवी, वो किताब लेके आकर रामानुजाचार्य को उठाई, रामानुज उठो और ये किताब लो और यहाँ से जाओ। शारदा देवी स्वयं दुर्गा देवी, रामानुजाचार्य खुश हो गए, किताब लेके आ गए, कई दूर चल के आ गए, लगभग एक महीना तक चल के वापस आ गए। वहाँ के पंडितों को पता लगा कि हमारा किताब नहीं है, तो बहुत सारे पंडित ढूंढते ढूंढते आए, रामानुजाचार्य को पकड़ लिए, बोले कि हमारा किताब तुमने लेके आया। रामानुजाचार्य मना तो नहीं करेंगे, बोले कि हाँ हमें चाहिए, दे दिए उनको। फिर दुखी हो गए, ये किताब के बिना मैंने टीका नहीं लिख सकता वेदांत के ऊपर, मायावाद का खंडन नहीं कर सकता। तब कुरेश ने बोला कि आप चिंता मत करिए गुरु महाराज, क्यों? क्योंकि ये जो एक महीना आ रहे थे हम, रात भर आप सो रहे थे और मैं दिया लगा के किताब को पढ़ रहा था, एक महीने में बोधायन वृत्ति को पढ़ के खत्म कर दिया मैंने और सब कुछ याद रख लिया, और मुझे अगर कुछ दिन टाइम देंगे यहाँ पर मैं लिख के आपको दे दूंगा किताब। सी बताइए उस समय कैसे ज्ञान, कैसे बुद्धि उनका था, उसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं, एक बार देखेंगे और याद रख लेंगे पढ़ के। ऐसा यहाँ पे हम सभी लोग, हम लोग आश्चर्य होते रहते हैं, कमल लोचन को जब भी बैठते हैं व्यास आश्रम में, जब भी बैठते हैं कुछ नया चीज बताएंगे, मगर कभी दिखते नहीं है वहाँ पे पढ़ाई करते समय। वो कोई किताब लाते हैं वैसे देखता हूँ, कुछ नया किताब लाएंगे तो ऐसे बैठ के वो सारे पढ़ने को पलटते रहते हैं और उसको बंद कर देंगे, फिर उसको पूरा याद रह जाता है वो किताब, ऐसा फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसा बोलते। तो वो पूरे है वहाँ पे कुछ दिन बैठ कर वो बोधायन वृत्ति को लिख के अपने गुरु महाराज को दे दिया, प्रस्तुत कर दिया, जैसे प्रस्तुत कर दिया खुश हो गए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य आके सब बताया अपने शिष्य को, कुरेश ने कैसा विचक्षण बुद्धि का प्रतिपादित किया वहाँ पर दिखाया। फिर उन्होंने श्रीभाष्य पर लिख दिया, उनका असिस्टेंट बना कुरेश, श्रीभाष्य लिखा, श्रीभाष्य लिखने पर मायावाद का खंडन हो गया। अभी बोले प्रचार, फिर अपने 70 से भी अधिक शिष्यों को लेकर उन्होंने निकल पड़े प्रचार करने के लिए। प्रचार करते करते वो कांचीपुरम होते होते तिरुपति गए, उस समय बहुत सारा कंफ्लिक्ट था, तिरुपति को भगवान तिरुपति को लोग कुछ लोग सोच रहे थे शिव जी है, कुछ लोग सोच रहे थे काली है, कुछ लोग सोच रहे थे कार्तिकेय है। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य वहाँ के पंडितों को शास्त्रों के द्वारा प्रमाण करके ये दिखाया ये विष्णु मूर्ति है, ऐसे अनेक जगह हमें प्रचार किए। एक जगह पे गए वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे और एक साथ बोले कि हम एक साथ प्रश्न पूछेंगे, हजारों प्रश्न तुमको एक साथ जवाब देना पड़ेगा। रामानुजाचार्य बोले कि ठीक है, मगर एक शर्त है, बीच में एक पर्दा रहेगा, मैं पर्दे के ये बाजू रहूंगा तुम वो बाजू, तुम सब एक साथ प्रश्न पूछो, मैं एक साथ सबका जवाब दूंगा। बहुत सारे पंडित वो बाजू बैठ के एक साथ प्रश्न पूछे, अलग अलग प्रश्न, रामानुजाचार्य सब सुने और एक साथ जवाब दिए, और जिसका जो प्रश्न था उसको वही जवाब सुनाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ, एक भक्त जो कि पर्दे के ऊपर जो रह के रामानुजाचार्य के शिष्य उनको देख रहे थे, उस समय शेषावेश हुए थे, वो बहुत सारे सर वाले शेषनाग वो उनके सत्यावेश अवतार थे ना, तो वो देख रहे थे कि वो जवाब दे रहे थे फटाफट फटाफट, सारे इतना सारा मुखों से वो जवाब दे रहे थे। ऐसे पूरे भारत भर में घूम घूम कर प्रचार किए, प्रचार करके श्रीरंगम आए, श्रीरंगम में आके कुरेश, फिर उनके बहुत सारे उनके शिष्यों की कथा भी सुनने लायक है, कथा उनके शिष्यों की कथा सुनने पर और पता लगे ये कितने बड़े आचार्य रहे होंगे करके, महापूर्ण गोष्ठीपूर्ण अनंत आचार्य जो तिरुपति में रहा करते थे, कुरेश गोविंद और दासरथी, ऐसे अनेकों शिष्य, इनकी कथा भी लंबा लंबा है एक एक शिष्य का। खैर वो आए बाद में, कुरेश का आंख निकाल दिया था एक राजा ने, वो शैव था। एक्चुअली ऐसा हुआ था, राजा ने सोचा कि सब लोग शिव भक्त होना चाहिए, कैसे होगा रामानुजाचार्य को अगर शिव भक्त बना देंगे सब शिव भक्त बनेंगे। कुरेश ने बोला कि आप जाओ मत राजा के पास, क्योंकि राजा का जो दाल में काला है कुछ, कैसे करना आप एक काम करो, मेरा गृहस्थ कपड़ा पहनो और आप चले जाओ, मैं जाता हूँ आपका कपड़ा पहन के। उनका कपड़ा पहन के गए, राजा बोला कि यही रामानुजाचार्य, बोला कि शिव भक्त बनो तुम, बोले कि नहीं विष्णु परम ब्रह्म है पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनका आंख निकाल दिया राजा ने कुरेश का। रामानुजाचार्य फिर वहाँ से चले गए थे बहुत दूर, वहाँ फिर यादवगिरी गए थे, वहाँ पे यादवाचार्य के सेवा पूजा गए लगभग 14 साल से कुछ ऐसे, बाद में फिर श्रीरंगम आए। तब तक कुरेश बहुत अच्छे भक्त थे। एक दिन कुरेश जाकर रंगनाथ को बोले कि हे रंगनाथ, नहीं रंगनाथ बोले कि कुरेश मुझे कुछ वर मांगो। तो पुरेश बोले कि हाँ बहुत मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर आप चाहते हो तो काम करो मुझे वैकुंठ भेज दो बस, मुझे अभी जाना है, बहुत हो गया यहाँ पर। भगवान बोले कि नहीं और कुछ मांगो ना, नहीं मुझे वैकुंठ जाना है। चलो ठीक है तुम वैकुंठ, आप क्या आपके संबंध में जो भी रहेगा वो वैकुंठ जाएगा, पुरेश को ऐसा बोल दिए। और ये बात फैल गया रामानुजाचार्य सुने, रामानुजाचार्य जैसे सुने रामानुजाचार्य को उत्तरी था ना, उत्तरी उठा के जोर जोर से नाचने लगे, सब लोग पूछे आपको क्या हुआ, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म हो गया वैकुंठ जाने का। वो कैसे, क्योंकि भगवान ने कुरेश को मेरे शिष्य को बोले कि तुम्हारा संबंध में जो भी है, एक कुत्ता भी तुम्हारा संबंध में आएगा तो वो वैकुंठ जाएगा, और मैं तो उनका गुरु हूं ना, मैं भी उनका संबंध में आता हूं तो मैं भी वैकुंठ जाऊंगा। क्यों ऐसा सोचे, एक बार ऐसा हुआ था उन्हें वैष्णव मंत्र की दीक्षा पाने के लिए गोष्ठीपूर्ण नामक एक गुरु के पास गए थे, वो उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। 18 बार जाने के बाद गोष्ठीपूर्ण ने उनको एक मंत्र दिया, वैष्णव मंत्र जो कि श्री संप्रदाय का मूल मंत्र, जैसे हमारा महामंत्र है उनका वो श्री संप्रदाय का ओम नमो नारायण। बोले कि ये सीक्रेट मंत्र है, ये किसी को मत बताना रामानुज, मगर जो व्यक्ति इसको जप करेगा वो वैकुंठ जाएगा। रामानुजाचार्य गुरु के पास आ गए और सोचे जो भी जप करेगा वैकुंठ जाएगा। इस संसार में कितने लोग तड़प रहे हैं भौतिक संसार में, भौतिक संसार में सभी लोगों को वैकुंठ जाना चाहिए, वहाँ खुश सुखी रहना चाहिए, मुझे तुरंत बता देना चाहिए सबको। मगर गुरु जी बोले बताओ मत, गुरु के आदर्शों को पालन नहीं करूंगा तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। ठीक है ना, मैं अकेला नरक जाऊंगा मगर सभी लोग का तो उद्धार हो जाएगा। तुरंत एक मंदिर के दीवार के ऊपर चढ़े, सब लोग को बोला इधर आओ उधर आओ, आपको बहुत बड़ा सा संपत्ति देने वाला हूँ। सब लोग आए बोले कि आपको संपत्ति चाहिए, हाँ। तो सभी लोगों को लेके ओम नमो नारायण आय जप करो, सभी लोगों ने जोर जोर से कई देर तक ओम नमो नारायण आय जप किए। सब लोगों को पूछे आपको संपत्ति मिला ना, हाँ हाँ हमें संपत्ति मिला है जो कि संसार से परे संपत्ति है। सब लोग आनंद विभोर हुए। ये बात गया गुरु के पास, गुरु गुस्सा हो गए बोले कि कितना मूर्ख था, इसको मैंने मंत्र दिया। रामानुजाचार्य को बुलाए बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको मालूम है इसका परिणाम क्या है ना, हाँ गुरु के आदेशों का पालन ना करने पर मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मालूम होने पर क्यों ऐसे किया, तो अत्यंत नम्रता से बोले कि हे महाराज मैंने ऐसे सोचा, देखा कितना तड़प रहे कष्ट भोग रहे भौतिक संसार में सारे जीवात्माएं, अगर मैं एक व्यक्ति के नरक जाने के बदले में सारे संसार के लोग अगर वैकुंठ प्राप्त करते हैं, वैकुंठ के सुख आपकी सेवा भगवान की सेवा को प्राप्त करते हैं तो मुझे नरक जाने में क्या फर्क पड़ता है, मैं तुच्छ जीवात्मा हूँ गया गुजरा हुआ इंसान, मैं नरक जाऊंगा क्या फर्क पड़ता है, सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार का भावना को देखकर गोष्ठीपूर्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए और रामानुजाचार्य शिक्षा मांगे कि मैं आपको समझ नहीं पाया था करके। रामानुजाचार्य के अंदर वो बात था, मैं मेरे गुरु को बातों को नहीं माना ना तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो अभी कन्फर्म हो गया मैं वैकुंठ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि भगवान ने मेरे शिष्य को बोला तुम्हारे संबंध में जो है तो वो सब जाएंगे वैकुंठ। मगर फिर बोले कि ठीक है मगर तुम मेरे से पहले कैसे वैकुंठ जाएगा, मेरे से मेरे को छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम, अगर भरतराज को तुम वर मांग सकते हो रंगनाथ को मैं भी वर मांग सकता हूँ, मैं भी ये वर मांगूंगा जाकर कि तुम्हें वैकुंठ नहीं भेजेंगे। तो जा रहे थे फिर सोचे कि नहीं नहीं मैं भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए मुझे, मगर तुम मेरे को कैसे छोड़ के जाना चाहते हो। कुरेश की विचार देखिए, शिष्य की विचार ना कि हे गुरु महाराज मैं चाहता हूँ कि आप वैकुंठ आने से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ और आप आते समय मैं आपका स्वागत कर सकूँ, अगर आप पहले जाएंगे तो आपको मुझे स्वागत करना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं है ना कि आप गुरु हैं मैं आपका स्वागत करूँगा इसलिए मैं पहले जाऊँगा वहाँ पर और आपके स्वागत के लिए वहाँ इंतजार करूँगा। ये कुरेश का विचार था। ऐसे दिव्य दिव्य बातें हैं और वैष्णव सेवा खास करके। फिर कुरेश जाते समय कुरेश के दो बच्चे हुए थे, मैं बोलना भूल गया, कुरेश के दो बच्चे हुए थे, वो दो बच्चों का नाम रामानुजाचार्य ने रखा था पराशर भट्ट और व्यास भट्ट करके, उनका जो तीसरा प्रतिज्ञा है वो पूरा किए थे, कुरेश के दो बेटों का नाम रखा था। बहुत विद्वान थे पराशर, एक बार एक मायावादी वहां पे आया था, वो बोल रहा था मैं सबसे बड़ा पंडित हूँ, वो बहुत छोटे थे तभी चलना चालू किए थे बोलना चालू किए थे पराशर, इतने बड़े विद्वान थे, एक रेती नंगे थे और वो पंडित बीच सड़क में जा रहा था, बाली है ना बालू वो मुट्ठी में लेके गए, बोले कि महाशय आप बहुत बड़े पंडित है तो बताइए इस मुट्ठी में कितना कण है रेती का। खूब पंडित बोला कि सही बात है मैं नहीं बोल सकता और आके दंगोत मारे उनको, बोले कि मैं सोच रहा था मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, ऐसे विद्वान, इसलिए उनका नाम रखा गया था पराशर, रामानुजाचार्य रखे। फिर अंत में पूरे गए ऐसे सब हुआ, ऐसे कई कथाएं हैं, लंबी कथाएं। फिर रामानुजाचार्य का भी समय आया वैकुंठ जाने का, सभी भक्त दुखी हो गए, मंदिर के अंदर ही रामानुजाचार्य वैकुंठ चले गए। वैकुंठ चले जाने के बाद सभी लोग दुखी हुए, साथ साथ में रंगनाथ भी दुखी हुए, और सभी लोगों ने उनके शरीर को रामानुजाचार्य के बाहर लेके समाधि देने के लिए सोच रहे थे। तो उन्होंने बोले कि नहीं, रंगनाथ बोले कि नहीं, इसको बाहर लेके समाधि नहीं, बाहर लेके मत जाओ, इनका शरीर, रामानुज का शरीर कोई एक साधारण शरीर नहीं है, इसीलिए मेरे मंदिर के अंदर ही एक स्थान है जहाँ पे भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी वहाँ पे लीलाएं करते हैं, वहाँ पर इसको समाधि दें। अपने लीला स्थली में रामानुजाचार्य का समाधि देने के लिए भगवान बोले, मंदिर के बाहर लेके नहीं जाना। तो मंदिर के बाउंड्री के अंदर, मंदिर के बाजू में, लक्ष्मी मंदिर के बाजू में रामानुजाचार्य का समाधि दिया गया। सभी लोग एकदम दुखी रो रहे हैं, कोई खान पान सब छोड़ दिए हैं। ऐसे एक दिन बीता, दो दिन बीता रामानुजाचार्य के विरह में, तीसरे दिन सभी लोग देख रहे हैं तो समाधि के पास जाके कि वो रामानुजाचार्य समाधि से बाहर आके उठ के बैठे हुए हैं, और वो अभी तक वैसे बैठे हुए हैं। वो रामानुजाचार्य का शरीर अभी भी वैसे ही है। वहाँ पे जो समाधि में रामानुजाचार्य का शरीर है वो विग्रह नहीं है, वो स्वयं रामानुजाचार्य के शरीर है। अगर उसको आप जानना चाहते तो आप नजदीक जाके उस विग्रह की आंखों में आंख डाल के देखिए। हम गए थे यहाँ तक भी, कभी उनका ड्रेसिंग करते हैं तो सुबह सुबह अगर उस पुजारी का कृपा होगा तो अंदर लेके अगर दिखाएंगे, उनका नाखून, उनका सब एकदम एज इट इज दिखता है रामानुजाचार्य का। फिर रामानुजाचार्य अभी भी उस समाधि में वैसे ही बैठे हुए हैं, समाधि से ऊपर उठकर। तो ये थे श्री रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत करके दर्शन का प्रचार किए थे, मायावाद का खंडन करके, और भाष्य लिखे थे वेदांत सूत्र के ऊपर। इस विशिष्ट अद्वैत क्या है, और ये विशिष्ट अद्वैत और हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व में क्या अंतर है, इस बात को जानने के लिए कृपया शाम को गौरार्थ की बात सभी लोग यहाँ पर आइए, कमलोचन प्रभु के द्वारा ये प्रवचन। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय।